धन्यवाद भाई नेवल। मैंने भाई नेवल से कहा, आपको यकीन है कि आज सुबह के लिए आपके पास थोड़ा भी अभिषेक नहीं है? मैं यहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया। हम कुछ लोग इकट्ठा हुए थे रविवार की प्रातः, जिन्हें मुझे वहाँ मिलना है। मैंने उन्हें अभी देखा कि वे कलीसिया में आए हैं, और मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यहाँ कलीसिया पर बीमारों के लिए प्रार्थना करना बेहतर है। मुझे नहीं पता, मैं कलीसिया को पसंद करता हूँ, और मैं यहाँ पर आया जहाँ सभा के लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, और वहाँ पीछे एक छोटी सी लड़की थी। वो बहुत ही छोटी प्यारी सी लड़की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी वो यहीं कहीं पर बैठी हुई है, यदि लोग घर पर नहीं गए हैं तो। ओह, अब मैं देखता हूँ, और वो रही सबसे प्यारी सी लड़की, और बहुत ही बीमार है। और जब हम संदेश को सुन रहे थे, और हम अन्य भाषा में संदेश के अनुवाद को होते हुए सुन रहे थे, और हम सुन रहे थे, और हमने सोचा हम समझते हैं उस एक छोटी लड़की के बारे में कुछ तो कहा गया था, और हम यह देखने के लिए रुके हुए थे कि क्या प्रभु ने एक संदेश को दिया है, वहाँ पर क्या कहा जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो छोटी लड़की अभी ठीक है और चंगाई पाने जा रही है। इसलिए वहाँ एक महिला भी थी जिसने उसकी दृष्टि को खो दिया था, और हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वहाँ एक एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति था जो एक सेवक था। मैं नहीं सोचता कि उस व्यक्ति का 25 या 40 पाउंड का वजन होगा, बस बहुत बहुत, और सो मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए नीचे गया। और मेरे इस प्रकार से संकोच करने का जो बहुत बड़ा कारण था, मेरे दांतों का जो भराव है, दांतों में भरे जाने वाला इस प्रकार का पदार्थ होता है, वो बाहर निकल गया था, और आज सुबह मेरे मुंह से अपने आप सीटी बज रही है यहाँ मेरे दांत के इस सामने के स्थान से। और अब मुझसे कहते हैं कि अब पूरी तरह से नीचे तक साफ करके और उस पर कैप को यानी ढक्कन को लगाना होगा। और सो ये बुढ़ापा बस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, यही वो केवल बात है जिसे मैं जानता हूँ। और मुझे उस एक दांत में भराव करना था, और इसका आधा हिस्सा, और जब मैं बात करना आरंभ करता हूँ तो आप इसे महसूस करते हैं कि एक तरह से हवा बाहर निकलती है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, आपके होठों से पार होती है, और यह आपको एक तरह का तोतला जैसा बना देता है। आज हम वास्तव में एक सौभाग्यशाली लोग हैं, आज सुबह जीवित रहने के लिए और कलीसिया में आ सकते हैं, और क्रिसमस की इस पूर्व संध्या पर उत्सव के लिए रुके हुए हैं जिसे वे करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं यहां आज सुबह बहुत सारे बच्चे हैं, तो मुझे बस रुके रहना होगा, समझे? और हम व्यस्क हैं, कभी कभी हम उन बातों को बोलते हैं जिन्हें बच्चों को सुनना भी नहीं चाहिए, आप जानते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि कलीसिया के पास इन बच्चों को देने के लिए कुछ उपहार हैं। मैं बस इसे उधर देख रहा हूं, वहां पीछे की तरफ। ओह, आप रुकना चाहते हैं संडे स्कूल के बाद? आप बस थोड़ा रुके रहें, देखें, क्योंकि मैं सोचता हूं कि छोटे बच्चों को आज सुबह देने के लिए वहां पीछे उनके पास कुछ उपहार हैं। और जब मैं, आप जो छोटे बच्चे हैं, याद रखें, जब हम ऐसा कर रहे हैं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, यह सांता क्लॉस नहीं है, क्योंकि यह एक कहानी है जिसे किसी दिन आप सीखेंगे कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यह तो यीशु मसीह है जो सारी सच्चाइयों का सत्य है, आप देखना, परमेश्वर का पुत्र। और हम आपको आज सुबह यह छोटा सा उपहार दे रहे हैं, क्योंकि यह आपको बताता है कि एक बार परमेश्वर ने सबसे महान उपहार दिया जो कभी वो मानव जाति को दे सकता है, उसका पुत्र है। और हमारे पास इसे व्यक्त करने के लिए एक खराब तरीका है, और इसके साथ तुलना करने के लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम केवल मनुष्य के नाई एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं।
अब मुझे अगले रविवार तक रुकना था, और संभव है कैसे भी मैं बताऊंगा कि कुछ तो ऐसा जिस पर मैं बोलना चाहता था, और हमें घर पर कुछ तो एक दर्शन के लिए ज्ञात हुआ है कि मुझे इसका पालन करना ही होगा। और यह एक तरह का, यह एक प्रकार से कठिन प्रतीत होता है, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कहता है वह कठिन है, उसके बोझ हल्के हैं। और आने वाले रविवार को यहाँ रहते हुए परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम यहाँ एक सभा को करेंगे जो कि नए वर्ष की पूर्व संध्या से ठीक पहले होगी, यदि परमेश्वर हमारी इस सभा को रखने से प्रसन्न है तो। और हम सुबह की सभा करना चाहते हैं जो बीमारों के लिए प्रार्थना होगी, और हो सकता है एक बपतिस्मा की सभा हो। तब मैंने सोचा अपने दोस्तों को इसकी सूचना दे दूं ताकि वे वहां आ सकें। फिर हमारे पास रविवार की सुबह और रविवार की रात सभा होगी, और फिर लोग नए साल के लिए रुकना चाहते हैं तो हमें हमें क्या इसके लिए समय पर ध्यान देना है? यहाँ बहुत सारे सेवक होंगे जो नए साल की रात को बोलेंगे, यह मध्य रात्रि तक चलता रहेगा और हम कुछ सेवकों को आमंत्रित करते हैं ताकि आकर और बोले, परमेश्वर की इच्छा है तो मैं उनमें से एक होना चाहता हूँ कि नए साल की रात को कुछ कहूँ। और फिर अगले रविवार मैंने सोचा कि मैं बातों की एक रूपरेखा को लेकर आऊंगा, जो बातें हुई हैं, जो होती आई हैं, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर उसके लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करता है, और इसे यहाँ कलीसिया में सीधे एक चरम बिंदु के अंदर लेकर आता है। और आप में से बहुत से लोग जो इस आयकर संबंधित मामले के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें से होकर हम जा रहे थे, यह सुलझ गया है, और इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यह किस तरह से हुआ। और मुझे लगता है ऐसा है कि इसे अगले रविवार फिर से बताना होगा, तो मैं अब अगले रविवार तक के लिए इंतजार करूंगा और आज सुबह आपको वचन में से थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा, समझे? और आने वाले रविवार को मैं कोशिश करूंगा, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि यह सब किस प्रकार से आया, और मैं आपके लिए उन प्रत्येक बातों को लेकर आऊंगा जिसे परमेश्वर ने कहा था, और देखना ये बिल्कुल ठीक इसकी जगह पर पहुँचा है, यह बिल्कुल ठीक जगह पर स्थित हुआ है। देखा, वह कुछ भी गलत नहीं कहता है। लेकिन अब एक बात जो मैं आज सुबह कहना चाहता हूँ, जो शायद मैं नहीं बताता, नहीं अगले रविवार को, जो बीते कल में कुछ घटित हुआ उससे संबंधित है। मेरी आज सुबह आने की थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं वास्तव में एक प्रकार से उलझन में था, सो मैं ऐसा और महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ होने के नाते सो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। पिछली रात से पहले मेरे साथ भाई और बहन सॉटमैन थे, जैसा कि हम यहाँ जानते हैं, कलीसिया के वे ट्रस्टी यानी खजांचियों में से एक हैं। वो और उनकी पत्नी मुझसे और मेरी पत्नी से मिलने के लिए आए, और हम फिनिक्स और यहाँ वहाँ होने वाली सभाओं पर बात कर रहे थे कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है। और मुझे लगता है हम लगभग 10:30 बजे तक थे, और मैं 11 के आसपास बिस्तर पर सोने के लिए चला गया था, और कभी तो एक रात के समय मैंने नींद में एक सपना देखा, और इस सपने में मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो मेरा पिता की तरह होना चाहिए था, एक बड़ा विशाल व्यक्ति, वो बस मेरे पिता के नाई प्रतिनिधित्व कर रहा था, प्रतिकारबद्ध रूप से बोल रहा हूँ। मैंने एक स्त्री को देखा जो मेरी माँ की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे मेरी माँ की तरह होना चाहिए था, और यह पुरुष जो पिता की तरह होना चाहिए था वो इस महिला का पति था। वो महिला से क्रूरता से दुर्व्यवहार कर रहा था, यहाँ तक कि उसके पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, और वह उस महिला को इस तरह पकड़ता और उसे इस लकड़ी के टुकड़े से मारता, और वह गिरकर और नीचे चली जाती, और फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से वापस खड़ी हो जाती, और वह यहाँ वहाँ चलता उसे फिर से मारने के लिए सोचकर, और उसे फिर से मारता, और मैं कुछ ही दूरी पर खड़े होकर इसे देख रहा था। अंत में मैं बस इससे तंग आ गया, और मैं एक तरह से इस व्यक्ति से छोटा था जो मेरे पिता की तरह होना चाहिए, सो मैं उसके पास चलकर गया और मेरी उंगली को उसके चेहरे में रखा। मैंने कहा, उसे दोबारा मत मारना, देखा? और जब मैंने ऐसा किया, कुछ तो होना आरंभ हुआ, मेरे हाथ के बाजू फड़कना शुरू हो गए, और मेरी मांसपेशियां तगड़ी बहुत ही बड़ी हो गई। मैंने ऐसी मांसपेशियों को कभी नहीं देखा, और मैंने बस उस व्यक्ति को कॉलर से पकड़ा, और मैंने कहा, उसे फिर से मत मारना, यदि तुम करते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा, यदि तुम उसे फिर से मारते हो। और वो व्यक्ति मुझसे डर गया, और मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, मैं जाग गया। तो मैं बस कुछ क्षण के लिए वहीं लेटा रहा। इस सिलसिले में जो इसका अनुवाद आया, निश्चित रूप से वो महिला प्रतीकात्मक रूप से बोलते हुए कलीसिया है, जो कि माँ की तरह है। वो पिता उसके ऊपर संप्रदाय है, जो कलीसिया के ऊपर अधिकार करता है, जैसे पति पत्नी के ऊपर अधिकार करता है। और ये संप्रदाय जो कलीसिया को मार रहे हैं, और यहाँ तक कि उसे उसके पैरों पर खड़े भी नहीं होने देते, और बस हर बार जब वो उठने की कोशिश करती है या कुछ करती है, वे वहाँ के लोग, वे संप्रदाय उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। और इसका मतलब केवल यह है कि यहाँ कुछ विश्वास की मांसपेशियों को रखना है। वहाँ अपनी उंगली को उसके ऊपर दिखा रहा हूँ और कहते हुए, तुम मेरा सामना कर रहे हो, समझे? क्योंकि वहाँ पर कुछ तो लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, और वह ठीक था। उसके बारे में हम वहाँ ऊपर लगभग मुझे लगता है 2 घंटे या 3 घंटे थे और मेरी बेटी रिबिका उसमें से एक है वहाँ पहले वह लुइसविले में मेथोडिस्ट अस्पताल में काम करती थी। ओह वह नर्स प्रशिक्षण अनुभवहीन तरह का है। यह कैंडी स्ट्रिप प्रशिक्षण में नर्स के साथ काम करने वाले हैं वे उन्हें ऐसे बुलाते हैं या ऐसा ही कुछ और वह थी। उन्होंने उसे सुबह सुबह आने के लिए कहा और इसी बात ने मुझे उठा दिया और यह सुबह सुबह की बात है और वह यहाँ कुछ अन्य छोटे स्कूल के सहयोगी के साथ वे वहाँ एक साथ काम करते थे और उन्हें लुइसविले ले जाने वाले थे। उन्हें 10 बजे वहाँ होना था और मेरी पत्नी ने सोचा कि वह बेडरूम में क्यों नहीं जा सकी। मैंने इसे बंद कर दिया था। अब मेरे जीवन में कई चीजें हुई लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक बेहोशी जैसी अवस्था में चला गया। मैं अनुवाद को नहीं जानता। मेरे जीवन में इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन मेरे सामने ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे एहसास हुआ कि यह एक दर्शन था और मैं दर्शन में था लेकिन मैं अपने बेटे जोसेफ से बात कर रहा था जो उस समय वो कमरे में नहीं था। लेकिन कैसे भी जैसे ही वो दर्शन मुझे मिला मैं जोसेफ से बात कर रहा था और मैंने ऊपर देखा और यह एक प्रकार के एक पिरामिड के आकार में मेरे सामने छोटे छोटे पक्षी खड़े हुए थे जो ऐसे ही कुछ आधा इंच के आकार के थे और वे ऊपर डाली पर थे। कह सकता हूँ ये 3 या 4 थे। फिर अगली डाली पर शायद 8 या 10 थे और नीचे सतह पर 15 या 20 थे और वे छोटे योद्धा थे क्योंकि उनके पंखों को मारा गया था और ऐसा लगता था कि वे मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो कह रहे थे तथा मैं पश्चिम में था। ऐसा दिखाई दे रहा था टूसॉन एरिजोना के आसपास था और वे पक्षी पूर्व की ओर देख रहे थे और मैं ध्यान से सुन रहा था। वे कहने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दिखा जैसे वे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और उनके छोटे छोटे पंख थे जो पूरी तरह से मार खाए हुए थे और इत्यादि। वे लगभग काफी युद्ध से क्षतिग्रस्त हुए थे। फिर अचानक एक पक्षी ने दूसरे की जगह लेना आरंभ किया इस तरह से कूदते हुए और वे छोटे पक्षी तेजी से उड़ते हुए पूर्व की तरफ उड़कर चले गए और जब उन्होंने ऐसा किया तब कुछ बड़े पक्षी वहाँ पर आ गए जो पिंडों की तरह दिख रहे थे जिनके नुकीले पंख थे और वे एक झुंड में आए थे और तेजी से उड़ते हुए वे छोटे पक्षियों की तुलना में अधिक तेज थे। वे जो पूर्व की तरफ उड़ गए थे और मैं अब भी अपने 2 विवेक में एक साथ था। मैं जानता था कि मैं यहाँ पर खड़ा था और मैं जानता था कि मैं कहीं तो और था समझे। और मैंने सोचा अब यह दर्शन है और मुझे समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। और दूसरे झुंड की पक्षियों की तुलना में कोई और नहीं आया। मैंने पश्चिम की ओर देखा और एक पिरामिड के आकार में देखा जैसे 2 दूत दोनों ओर थे और एक दूत जो 7 में सबसे ऊपर की ओर था। 5 सबसे शक्तिशाली दूत वहाँ पर आ गए जिसे मैंने जीवन में कभी नहीं देखे थे। क्या ही जबरदस्त गति थी जिसे मैंने कभी देखा। उनके सिर तने हुए थे और उनके नुकीले पंख बस शीघ्रता से हिला रहे थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ इस तरह से मुझ पर आई इतना तक कि इसने मुझे एकदम से जमीन पर से उठा लिया। वहाँ जमीन से बहुत ही दूर ऊपर मैं जोसेफ को अभी भी बोलते हुए सुन सकता था और आवाज ऐसी प्रतीत होती थी जैसे ध्वनि की सीमा तोड़ते हुए वो एक बड़ी गर्जन हुई बहुत दूर तक जो दक्षिण की ओर चली गई। और जब मैं ऊपर उठाया गया था और वहाँ दूतों की बहुत ही जबरदस्त गति थी और मैं बस उन्हें अभी देख सकता हूँ। देखो जैसे कि वे उस आकार में थे इस तरह तब सीधे तेजी से मेरे अंदर आ रहे थे। मैं अब सपना नहीं देख रहा था। अब नहीं मैं ठीक वहीं पर था। मैं जागृत था जैसे मैं अब हूँ समझे। लेकिन यहाँ पर ये आ गए और वे इतने जबरदस्त तेज थे मैंने सोचा भी नहीं था। जब इसने मुझे ऊपर उठा लिया मैंने उस विस्फोट को सुना जैसे या एक विस्फोट की तरह हुआ जैसे ध्वनि की सीमा को तोड़कर बाहर चली गई हो। और जब ऐसा हुआ मैंने सोचा तो देखो इसका मतलब मैं किसी प्रकार के धमाके में अवश्य ही मरने वाला हूँ। और मैं बस जब मैंने उन चीजों पर सोचा मैंने सोचा नहीं यह ऐसा नहीं होगा क्योंकि यदि यह एक विस्फोट होता था तो उसने जोसेफ को भी ले लिया होता था क्योंकि वह अभी भी वहीं पर है बात कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं वहीं पर हूँ मैं उसे सुन सकता हूँ। यह ऐसा नहीं था। अब यह सब अभी भी दर्शन में है। यह ऐसा नहीं था। देखा यह दर्शन में था। और फिर अचानक ही जब मुझे एहसास हुआ कि मैं वे मेरे आसपास थे मैं उन्हें नहीं देख सका लेकिन मुझे उनके इस एक पिरामिड के समूह के अंदर लाया गया था इस पांच दूतों के समूह के अंदर, और मैंने सोचा अब मृत्यु का दूत एक होता है, पांच अनुग्रह के होंगे। मैं ऐसा सोच रहा था, मैंने सोचा ओह यह तो मेरे संदेश के साथ आ रहा है, यह मेरा दूसरा अंतिम चरण है, वह मेरे लिए प्रभु से संदेश को लेकर आ रहे हैं। और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ जोर से चिल्लाया, जितनी जोर से मैं चिल्ला सकता था, हे यीशु आपके पास मेरे करने के लिए क्या है। और जब मैंने ऐसा किया, यह बस मुझसे दूर चला गया। मैं तब से लेकर ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, समझे। मैं कल पूरे दिन घर में था, मैं महसूस करने लगा कि मैं आपे से बाहर हूँ, मैं अपने मन को सही नहीं बना सकता हूँ, और परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य, मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था जब ये मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने हाथों को रगड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैंने सोचा मैं अपनी सांस को नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं यहाँ वहाँ चलने लगा और सारे मंजिल पर और पीछे और आगे चल रहा था। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है प्रभु, इसका क्या मतलब है। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा प्रभु परमेश्वर आपका दास, मैं बस समझ नहीं सकता हूँ, क्यों, वो क्या था, इसका खुलासा करे प्रभु। तो ठीक है, जब मैं आपको इसके विषय नहीं बता सकता हूँ, जब मैं प्रभु की सामर्थ कहता हूँ, इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। ये ऐसा नहीं है आप यहाँ जो आशीषों से महसूस करते हैं, यह प्रभु का आशीष है, यह एक पवित्र है। ओह प्रभु, ये किसी चीज से परे है जिसे एक मनुष्य कभी कल्पना भी कर सके, समझे। और ये बात मुझे बुरी तरह से चिंतित कर रही थी, यह नहीं है, यह एक आशीष नहीं है, यह एक चिंता है, तुम परेशानी में हो, समझे, यही है वो। यदि मैं केवल किसी तरह से कर सकता हूँ कि मैं लोगों को बता सकूँ यह क्या था, या ये क्या, मैं इसके लिए क्या महसूस कर रहा था। ये ऐसे नहीं है इस तरह यहाँ बैठ कर आनंद करना चाहते हैं, यह ऐसा कुछ है कि आप में की हर एक तंत्रिका बस यह डर से परे है, यह भयभीत होने से परे है, यह एक पवित्र आदर है। मुझे इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ तक कि मेरी पूरी पीठ तक, ऊपर और नीचे, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी उंगलियों से होते हुए मेरे पैरों पर, ऊपर और नीचे, और पैर की उंगली, मेरी पूरी अवस्था बस नम हो गई थी। देखो बिल्कुल ऐसे जैसा कि आप संसार से कहीं तो बाहर चले गए हैं। और यह धीरे धीरे मुझसे जा रहा था, और मैंने परमेश्वर से कहा, क्या आप केवल मुझे बताएं, हे परमेश्वर मैं सोचता हूँ कि यह अब तक की सबसे करीबी मौजूदगी आई, जो फिर से जबरदस्त थी, जब मैं स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में था, उस समय जब उसने मुझे दिखाया कि जर्मन उकाब देख रहा है कि अंग्रेजी घुड़सवार अफ्रीका में से होते हुए वहाँ पर आया है, और उसने कहा सभी ने पाप किया है और महिमा के लिए कम पाया गया है। और मैं अपनी सहायता के लिए परमेश्वर को पुकार रहा था, और मैं उससे चाहता हूँ कि मुझे अनुवाद को दे, क्योंकि मैंने सोचा कि यदि इसका मतलब है कि मैं दूर जाने वाला हूँ, तो मैं खत्म होने जा रहा था, और यदि ऐसा था तो मैं इसके बारे में परिवार से कुछ भी नहीं बताने वाला था। यह मेरा घर जाने का समय है, क्योंकि मुझे अब घर जाना होगा, ऐसा ही है। लेकिन यदि इसका मतलब यही था, तो मैं परिवार को बताना नहीं चाहता था कि वे इसके बारे में कुछ भी जाने, बस इसे होने दो और सब ऐसा ही होगा। मैंने कहा हे परमेश्वर मेरी सहायता करें, मैं अपने परिवार को बताना नहीं चाहता, यदि आप ये मेरे घर के जाने की बुलावट है तो ठीक है, मैं जाऊंगा, आप देखना, मैंने कहा। और आप जानते हैं, आप कहते हैं ठीक है, आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जो आपने दर्शन में कहा, जो दर्शन में कहा गया, लेकिन आप तब उस तरह की बातों के बारे में नहीं सोच सकते, आप, मैं किसी भी तरह से नहीं कर सकता। और मैंने सोचा मैं केवल परेशान था, चिंतित था, आप नहीं जानते कि कैसे सोचें, आप नहीं सोच सकते हैं। और मैंने कहा स्वर्गीय पिता, यदि इसका मतलब यह है कि एक विस्फोट मुझे उठाने जा रहा था, तो ठीक है, मुझे अभी बताएं, सो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, आपकी महिमा और सामर्थ दोबारा मुझ पर आने दीजिए, और मुझे फिर से ऊपर उठाइए, या आपकी महिमा मुझ पर आने दीजिए, और तब मैं बाद में जान जाऊंगा कि इसका मतलब ये था, और सो मैं इस बात को अपने पास रख सकता हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ। सो तब मैंने कहा, तब परमेश्वर यदि इसका मतलब ये है कि आप अपने संदेश वाहकों को भेजने जा रहे हैं, जो मेरा कार्य आदेश है, तब आपकी सामर्थ फिर से आने दीजिए। यह जैसे मुझे कमरे से बाहर लेकर गया। हालांकि मैं अपने आपे में आ गया, अपनी बाइबल हाथ में लिए हुए, उसके बाद देखो और मैं परमेश्वर से मेरी सहायता के लिए मांग रहा था, और जब मैंने ऐसा किया तो उसने मुझे वचन में से कुछ दिखाया जो ठीक इससे संबंधित था, ठीक वहाँ पर, और मैंने सोचा क्या यह वास्तव में ऐसा हो सकता है, मैंने यह कैसे किया, और ओह मैं इन चीजों को लोगों को नहीं समझा सकता हूँ, मैं जिस बारे में जानता हूँ यह किसी भी चीज से परे है, समझे। मेरी पत्नी एक बहुत ही बेजोड़ महिला है, संसार में सर्वश्रेष्ठ में एक, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैं आगे चला गया, वह जानती थी कि वहाँ कुछ तो हुआ था, तो जब मैंने उसे बताया उसने कहा आप जानते हो बिल, मैं आपको उन बहुत से चीजों में देखती हूँ और सुनती हूँ, कहा आप जानते हैं मैं आप पर अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ, ये उसने कहा, उसने कहा लेकिन ये वास्तव में कुछ तो था, ये ऐसा प्रतीत होता है जो बस मुझे हिला देता है, उस धमाके का होना और इस तरह तेजी से उन दूतों का आना, वे पांच एक साथ जो उनके समूह में थे, जैसे एक तरह से जैसे मैंने पिरामिड को यहाँ चित्रित किया था, देखें वे ऐसे लग रहे थे, पहले वे ऐसे दिखे एक प्रकार से दूरी में थे, वे पिंडुक के रंग की तरह दिख रहे थे और वे इस दिशा में आ रहे थे और वे ऐसे दिखाई देते थे, एक दो तीन चार और फिर एक ठीक सबसे ऊपर था, देखे पांच की बनावट थी, और वे इतनी तेज गति से आए इसकी तुलना किसके साथ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही जेट विमान से या किसी से भी नहीं, और मैं तब उन्हें देख सकता हूँ और उनके सिर एक प्रकार से एक ओर घूमे हुए थे और वे पंख पीछे की ओर झुके हुए थे, पूरी तरह से कवच बंद थे, और वे यहाँ ऐसे आए व्यू इस तरह से, और तब वे नीचे आ गए और तब वे मुझे अपने पिरामिड के समूह के अंदर ले गए। मैंने देखा कि मैं जमीन के ऊपर उड़ गया था, मैंने सोचा शायद, मैंने सुना बहुत ही दूर से उस गर्जना को, जैसे एक विमान जब उस ध्वनि की सीमा को पार करता है, आपने इसे करते हुए सुना है, तब जैसे एक दूर से गर्जना हुई, मैंने सोचा इसका मतलब अब हो सकता है जब यह दर्शन मुझे छोड़ जाएगा मैं एक विस्फोट या किसी चीज से मारा जाऊंगा, मैंने सोचा मैं यहाँ हूँ, मैं उठाया गया हूँ, मैं वे यहीं कहीं पर है, मैं इसमें हूँ, यहाँ दूतों के पिरामिड में, लेकिन मैं नहीं जानता, हो सकता है प्रभु मुझे घर ले जाने के लिए आ रहा हो। तब मैंने जोसेफ को वहाँ कहते हुए सुना, डैडी, सोचा नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उसे भी ले जाता। तब किसी ने कहा, तुम याद रखना मैं रुका हुआ हूँ, एक संदेश के लिए देख रहा था जिसे मैंने हमेशा ही भविष्य के लिए देखा था, जो कुछ तो था, और एक दिन वो दर्शन, आप जानते हैं ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मुझे दर्शन मिला था, मुझे उस बारे में बता रहा था कि क्या होने जा रहा है, मैं सूरज में से होकर इस स्थान में कैसे प्रचार कर रहा था, और फिर उसने कहा अब याद रखें दूसरा अंतिम चरण अभी तक आना बाकी है, मैंने सोचा एक संदेश होगा, यहाँ मेरा संदेश याद है, उस चोटी के पत्थर का खुलना जहाँ वे सात आवाजें और मोहरें जो परमेश्वर के वचन में लिखी भी नहीं गई हैं, याद है, और ये मुझे उस पिरामिड के अंदर ले जाना, और जूनी जैक्सन यदि आप यहाँ हैं तो ज्यादा समय नहीं हुआ, वो सपना जिसे आपने मुझे बताया है मैं इसे आज सुबह नहीं बताऊंगा, आप परमेश्वर पूरी तरह से सिद्ध रूप से था, और इसका अनुवाद न देने के लिए मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने देखा कुछ तो गतिविधि हो रही है। जेटी के पास वही बात थी, देखे और मैं इसे जानता था, और बहन कॉलिंस के पास बिल्कुल वही बात थी, समझे, और उनमें से वे छह ठीक एक ही बात के लिए ले जा रहे थे, और फिर जिस दर्शन को मैंने वर्षों पहले आप सबको बताया था यह हाल ही में उस दिन घटित हुआ, देखा ऐसा होगा, और वहाँ पर है ये ठीक अपनी जगह पर है, हर एक चीज ठीक अपनी जगह पर है, ये अब कुछ तो मंडरा रहा है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरी प्रार्थना है, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तो केवल मरणहार हैं और यहाँ आज सुबह हम खड़े हैं, और प्रभु मैं आपने मुझे इस छोटे झुंड का और इस कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए भेजा है, और मैं अपने अंत पर हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरफ से क्या कहाँ आ रहा है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आपने कहा था कि आप जो करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपका महान दया का हाथ हमारे ऊपर हो। हम वास्तव में जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं, और हम जानते हैं कि आप वो एक नहीं जो गुजरे दिनों में जीवित थे, लेकिन आप आज तक जीवित हैं। आप हमेशा ही परमेश्वर थे, आप हमेशा ही परमेश्वर रहेंगे। आप समय से पहले परमेश्वर थे और आप परमेश्वर बने रहेंगे। जब कोई समय नहीं रहेगा, आप तब भी परमेश्वर बने रहेंगे।
और हम आपके हाथों में हैं प्रभु, हम तो बस मिट्टी हैं और आप आकार देने वाले कुम्हार हैं। हमारे जीवन को आकार दे प्रभु, उस तरह से जिससे आपके आदर के लिए सबसे अच्छी सेवा मिले, इसे प्रदान करें पिता। हम बस आपके हाथों में हैं।
हमारे पास यहाँ खुद को लाने का कोई जरिया नहीं था, या हम नहीं जानते कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। प्रभु, आप हमें जीवन देते हैं और आपके पास हम अपने जीवन को आपको वापस देते हैं, और इसी तरह आप हमें बदले में अनंत जीवन देते हैं।
हमारा विश्वास हमारे उसी अस्तित्व में सांस लेता है, और हम इसके लिए प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी दिन हम आपको देखेंगे और आप अपनी महिमा में होंगे और हम उसे देखेंगे।
और हम उन शब्दों को सुनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा किया मेरे भले और विश्वास योग्य दास। प्रभु के आनंद के अंदर प्रवेश करो, जो दुनिया की बुनियाद डालने से लेकर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उस समय तक के लिए। हे परमेश्वर, जब हम सभी मिलते हैं, हमारी अगुवाई करें। हम आपके दास हैं और हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं।
ये महान दर्शन हे प्रभु आपके दास के लिए बहुत है। मैं नहीं जानता कि क्या करना है, मुझे बस पता है कि वे आए थे, और मैं केवल वही कह सकता हूँ जो मैंने देखा है और जो कहा गया था। और कभी कभी यह मुझे डरा देता है परमेश्वर, और मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करना है। तब मैं बाइबल को लेता हूँ और वहाँ पढ़ता हूँ कि यशाया ने उस दिन मंदिर में कैसा महसूस किया होगा, जब उसने उन दूतों को देखा, उनके पंखों को पैरों के ऊपर रखे हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो चिल्ला उठा, मुझ पर हाय, क्योंकि मेरी आंखों ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया है। और उसके बाद ऐसा था, वो भविष्यवक्ता रो पड़ा मंदिर में। उसे शुद्ध करने के बाद जब उस दूत ने चिमटे को लिया और कोयले के अंगार को लिया और उसके होठों पर रख दिया, उसके स्वीकार करने के बाद कि वह अशुद्ध होठों वाला मनुष्य था और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता है, फिर भी वह एक भविष्यवक्ता था। उस दूत ने चिमटे को लिया और उसके होठों पर कोयले के अंगार को रख दिया और उसे शुद्ध कर दिया और कहा, अब जाकर भविष्यवाणी करो। प्रभु परमेश्वर, यशाया चिल्ला उठा, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। जब उसने कहा, हमारे लिए कौन जाएगा उस दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी के लिए। हे परमेश्वर, इसे फिर से दोहराएं। हे प्रभु, इसे फिर से आने दो। पवित्र आत्मा के साथ शुद्ध करने वाली अग्नि को भेजे, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ मैं एक अशुद्ध होठों वाला हूँ और यहाँ इस धरती में अशुद्ध लोगों के साथ रहता हूँ, और हम आपकी दृष्टि में अशुद्ध हैं प्रभु। लेकिन ओह, शुद्ध करने वाली सामर्थ को भेजे पवित्र आत्मा। हे परमेश्वर, हमें शुद्ध करें, अपने दास को शुद्ध करें प्रभु। और फिर परमेश्वर बोल, आपका दास सुन रहा है, मैं उस आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे प्रयोग करें परमेश्वर। जब आप देखें कि योग्य है, जैसे मैं खुद को आपकी वेदी पर रखता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करे प्रभु, और अभिषेक करे और आगे भेजे प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि कोई तो जाए, तो क्या यही वो घड़ी है और यही वो समय है? मैं नहीं जानता प्रभु, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने उन दूतों को देखा था और आप जानते थे कि वे बातें बिल्कुल सच होनी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हाय मुझ पर, तो मेरी सहायता करें। और अब इन लोगों को आशीष दे, और हम आज यहाँ पर हैं, अब हमारे प्रभु के जन्म के इस उत्सव के समय की पूर्व संध्या से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे। और आज सुबह आपके दास हमारे भाई नेविल ने महसूस किया, हो सकता है कि यही एक वो समय हो कि उसे कुछ क्षण के लिए विश्राम करना चाहिए, और हो सकता है मुझे बोलना चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप मेरी सहायता करेंगे।
यहाँ लोग हैं प्रभु और हम सभी को आपकी आवश्यकता है, इसलिए हम अब प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष देंगे जब हम आपका वचन पढ़ते हैं और कुछ समय के लिए मनन करते हैं। आपका आत्मा हमारे ऊपर हो प्रभु और हमें शुद्ध करें और हमें पवित्र आत्मा के साथ आग पर रखें, परमेश्वर के संदेश के साथ वेदी से ताजा करें, एक मरने वाले संसार को हिलाने के लिए महान अनंत परमेश्वर के सामने पहुंचने से पहले, क्योंकि हम इसे उसके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं यहाँ कुछ वचनों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और कुछ बातें हैं जिसे मैंने यहाँ पर लिखकर रखा है और मैं सोचता हूँ डॉक या बिली या उनमें से किसी एक ने मुझे बताया कि वे बच्चों की वजह से थोड़ा सा जल्दी बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें बच्चों के लिए कुछ उपहार को देना है। आप जो छोटे बच्चे हैं जो अभी अपने संडे स्कूल से बाहर निकले हैं, आप कुछ समय के लिए आसपास रहें। हम यहाँ से जो कहेंगे जो हो सकता है आपके लिए थोड़ा गहरा होगा, लेकिन आप बस फिर भी कुछ मिनटों के लिए माता पिता के साथ बैठे रहें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।
Psalms 89th Psalm. I want to read a verse.
अब भजन संहिता में नवासी भजन संहिता, मैं नवासी भजन संहिता का एक या दो पद पढ़ना चाहता हूँ। मैं 50, 51 और 52 पदों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। अब आप जो सबसे पीछे हैं, दूर पीछे की तरफ हैं, क्या आप सुन सकते हैं? ठीक है, क्या आप अपने हाथ उठा सकते हैं? तो मैं कौन सा है, क्या ये सभी माइक काम कर रहे हैं? क्या यह एक अच्छा वाला माइक है या ये वाला अच्छा है? ये वाला ठीक, यहाँ यह दो जो इस तरफ है तो ठीक है। मुझे नहीं पता कि वे इसे टेप करने जा रहे हैं या नहीं, यह तो केवल आज सुबह एक प्रकार से अनपेक्षित कार्यक्रम है, लेकिन अब मत भूलना अपने सभी मित्रों को। और मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से लगभग आने वाले रविवार की सभा में आने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि उन्हें यहां जल्द ही कलीसिया को समाप्त करना होगा और उसके बाद मैं इसके लिए वापस आऊंगा, उन सात मोहरों का प्रचार करूंगा यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो, यहां इन वचनों में से बताऊंगा। भजन संहिता की पुस्तक में नवासी अध्याय 50वें पद से आरंभ करूंगा। अब वचन के पढ़ने को ध्यान से सुने।
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people, wherewith thine enemies
have प्रभु अपने दासों की नामधराई की सुधि कर, मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ, तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन और आमीन। मैं कुछ क्षणों के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे पहले चिन्हित कर दें और इसे अच्छी तरह से बार बार पढ़ें। हो सकता है इसे ठीक अभी फिर से पढ़ना उचित हो। अब ध्यान से सुने, देखा।
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people, wherewith thine enemies have reproached.
हे प्रभु अपने दासों की नामधराई की सुधि कर, मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ, तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन और आमीन। इसका ध्यान से अध्ययन करें, जैसा कि दाऊद इसे बोलता है। मैं एक पाठ के लिए उपयोग करना चाहता हूँ, यह बहुत अनोखा है। क्या ये फिर से क्रिसमस का पाठ है? लेकिन जैसा कि मैंने पिछले रविवार को एक अनोखे पाठ पर प्रचार किया था, मैं अब भूल गया कि यह क्या था। यह एक कौन सा बिखरना, संसार का टूट कर बिखरना। अब मैं इस रविवार के एक पाठ के लिए उपयोग करना चाहता हूँ, वचन के कारण निंदा को लेना। अब मैं अच्छी तरह से इसे फिर से दोहराता हूँ, वचन के कारण निंदा को लेना। परमेश्वर का एक समय है और उस समय का एक कारण होता है ताकि अपने सारे वचनों को पूरा करे। परमेश्वर बिल्कुल अच्छी तरह जानता है कि वो वास्तव में क्या करने जा रहा है। हम नहीं जानते, हमें केवल इसे ग्रहण करना है जैसे वो हमें इसे देता है। लेकिन वह जानता है और कुछ भी गलत नहीं होगा जो उसने करने की योजना बनाई है। यह सब होने पर है। कभी कभी सख्त और कठिन बातें होती है जो केवल वास्तविकता को बाहर लाने के लिए होती है, उस वस्तु का सच्चा गुण। आप जानते हैं, बारिश का जन्म एक धारीदार, खुरखुरे, बिजली से घिरे हुए, गरजते हुए आसमान में होता है। और यदि हमारे पास बारिश न हो तो हम नहीं जी सकेंगे। लेकिन क्या आपने देखा कि कौन सी बात बारिश को लाती है? गर्जन, बिजली, चमकती हुई, रोष, और बारिश वहाँ से बाहर आती है। एक बीज को मरना ही है, सड़ना है, दूषित होना है, दुर्गंध होना है, और नए जीवन को लाने के लिए धरती की मिट्टी पर वापस जाना है। इस सोने को जोर से मारा जाता है, पीछे और आगे से और आदि बार बार घुमाते हुए, तब तक जोर से मारना होता है जब तक का सारा बेकार धातु बाहर नहीं आ जाता है। इसलिए नहीं कि यह चमकता है, क्योंकि लोहे का पीलापन होता है, जिसे धोखे का सोना कहा जाता है, जो असली सोने जैसा चमकता है। लेकिन आप दोनों को एक साथ रखो, आप उन्हें एक तरफ रख दें, आप उन्हें शायद ही भिन्न कह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ रखो, आप इसे बता सकते हैं। और मारने वाला हमेशा ही तब तक मारता है जब तक वो अपनी छवि को सोने में प्रतिबिंबित होते हुए नहीं देख लेता है। और परमेश्वर एक समय को निर्धारित करता है और हर एक चीज के लिए एक उद्देश्य होता है, और जो भी वह करता है कुछ भी ऐसे अचानक से नहीं होता है। उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके बुलावट के अनुसार बुलाए गए हैं, समझे, हम पहले से ठहराए गए हैं, और हर एक चीज उसके लिए बिल्कुल सही काम करती है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता है। और उसने ऐसा ही कहा था कि हर एक चीज का अपना समय होता है, उसका मौसम होता है और अपना तरीका होता है, और हर गतिविधि के पीछे परमेश्वर होता है। और कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, यह तो हम पर निर्भर करता है, उन चीजों को हम पर डाल दिया जाता है, जांचना है और सोचना है। यह जांचता है यह देखने के लिए कि उस एक गतिविधि पर हम कैसी प्रतिक्रिया को करते हैं। कुछ समय पहले वहाँ वर्मोंट में भाई फ्रेड और मैं न्यूयॉर्क की तरफ चले गए, चैपलेन झील की उस ओर, और हमें वहाँ न्यूयॉर्क की ओर जाना था, और मैं ऊपर पहाड़ पर चला गया जहाँ वो ऊपर हुरिकेन पहाड़ था, जहाँ मैं शिकार करने जाया करता था। और वहाँ मुझे याद है जब मैं खो गया था और कैसे परमेश्वर ने मेरी वापस जाने के लिए अगुवाई की, बस केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, एक तूफान में से होते हुए कि मैं मर गया होता, नाश हो जाता। वैसे ही मेरी पत्नी और बिली, जो बहुत मीलों दूर नीचे छोटे से तंबू में थे, और मैं पीछे की ओर मुड़ गया था, और वहाँ थोड़ी सी बर्फ थी जिसमें से हम निकल कर आए थे ताकि हम तंबू में जा सकें वसंत के आरंभ में। और मैं वहाँ खड़े होकर भाई फ्रेड से बात कर रहा था, और पवित्र आत्मा ने कहा तुम वहाँ से बाहर आओ, और मैं कुछ समय के लिए झाड़ी में चला गया। उस स्थान में उसने मुझे बताया तुम्हारे लिए एक जाल को बिछाया गया है, सावधान रहना, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि कैसे क्या। मैंने वापस आकर और भाई फ्रेड को बताया, मैं उस रात कलीसिया की सभा में गया, इस बात को लोगों से घोषणा की, और अगली रात को यह घटित हुआ था। और उसके बाद मैं वहाँ पर खड़ा था जब उसने मुझे मजाक उड़ाने वालों पर कुछ बताया। उसने कहा यह तुम्हारे हाथों में है, उनके साथ जो करो, जो भी तुम कहोगे ठीक अभी हो जाएगा। आप वही हैं जहाँ कोई अपमानजनक, अधर्मी, और सभा में वे एक जवान पुरुष और एक महिला तमाशा कर रहे थे और उपहास कर रहे थे, और वो पुरुष इमारत में उसके साथ अश्लील प्रेम करने की कोशिश कर रहा था और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था जब मैं प्रचार करने की कोशिश कर रहा था, और उसने उसके सिर को पीछे खींचा और उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके सिर को पीछे करके और उसे चूमने की कोशिश की, और इस तरह से सभा में चल रहा था जो ध्यान को खींच रहा था। और पवित्र आत्मा ने कहा, अब ऐसा है, वे तुम्हारे हाथों में है, तुम उनके साथ क्या करोगे। वहाँ एक पवित्र खामोशी थी, हर कोई पूरी तरह से चुप बैठा था, और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे याद आया, ये दो हफ्ते पहले क्या पवित्र आत्मा की चेतावनी नहीं थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अब यही था वो जिसे वो चाहता था कि मैं कहूँ, देखा, क्योंकि आखिरकार मैं दोषी ठहरता हूँ, शायद उस बात पर नहीं, लेकिन दोषी हूँ, और जो एक बात में चूक जाए वो सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए मैंने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, और यहाँ अभी गवाह बैठे हुए हैं जो उस वक्त वहाँ पर थे। तब पवित्र आत्मा उतर कर आया। अब आप देखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इन चीजों का अर्थ था, आप एक सामर्थ के साथ क्या करेंगे। देखें, आपकी उस एक गतिविधि के लिए कैसी प्रतिक्रिया होती है, ऐसा कुछ तो जो एक गतिविधि के रूप में आता है, फिर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। आप समझे मेरा क्या मतलब है, आप क्या करोगे। और हो सकता है यह सब उत्तेजित करता है कि अब हम कहाँ पर हैं, मैं नहीं जानता, मैं बस नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा ही किसी तरह रहा है। और ये याद रखें कि वचन के लिए निंदा, वचन के लिए हमेशा ही एक निंदा को सहा गया है। सारे युगों में से होते हुए परमेश्वर के अभिषिक्त वचन की निंदा हमेशा ही की गई है, और यही वो वजह है, ये लोगों के लिए कठिन होता है जो नहीं समझते हैं, वे जानते हैं कि निंदा को कैसे लेना है। क्या आप याद कर सकते हैं, वे चेले वापस लौट रहे थे और आनंद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें उसके नाम के कारण निंदा लेने के लिए योग्य माना गया है। उसने कहा, जो मसीह में भक्ति पूर्व जीवन जीते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वचन की निंदा। आपको हमेशा ही इस निंदा के लिए खड़ा रहना है, आपको जांचने के उद्देश्य से, ताकि देखें, मसीह के पास आने वाले हर एक व्यक्ति को सबसे पहले बच्चों की तरह प्रशिक्षण होना चाहिए, उस उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। और याद रखें, यदि आप केवल चुप रह सकते हैं, तो याद रखें, यदि उसने आपको इसके लिए बुलाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे होने से रोक सके। कष्ट पहुंचाने में इतने शैतान नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन प्रकट किया जाएगा। आपने एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, और कोई भी आपका स्थान नहीं ले सकता है। शायद आपके नकल करने वाले और इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी आपके स्थान को नहीं लेंगे। सही है, परमेश्वर का वचन जयवंत होगा, यह असफल नहीं हो सकता है। यही है जहां हर एक मसीह को खड़ा होना चाहिए, इसे जानना चाहिए, और परीक्षाएं ऊपर आएंगी और आपको सब तरह से दिखाई देंगी, लेकिन याद रखें, परमेश्वर का एक उद्देश्य है और ये पूरी तरह से काम करेगा। अब आइए, अब परमेश्वर की वचन की कुछ घटनाओं को वापस देखें जो पूरे हुए हैं, और जिन्होंने अपने युग में वचन को परिपूर्ण किया है। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने आत्मा में महसूस किया कि कोई तो मेरी आलोचना कर रहा है। हो सकता है ये टेप सुनने वाले लोग रहे हों। मैं हमेशा ही हवाला देता रहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, वापस जाकर इस पर बाइबल के पात्रों को उठाएं। तो मैं इसे एक उद्देश्य के लिए करता हूँ। बाइबल ने कहा, ये बातें लिखी गई हैं जिससे कि हम उन्हें देख सकें, और बिना शिक्षा के यही एकमात्र तरीका है। केवल इसी तरह से मैं कर सकता हूँ, वापस हवाला देकर, और कहता हूँ, आप देखें कि यह कहाँ पर स्थित होती है, इस बात से क्या घटित हुआ, इस बात को किस स्थान से लिया गया है, देखा। और तब आप बस अपने आप को वहाँ पर रखते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ जैसे मैं एक छोटे लड़के पर प्रचार कर रहा था जो जहाज पर था, आप जानते हैं, और वो बूढ़ा कप्तान मर रहा था, वो बीमार था। उसने पूछा कि क्या जहाज पर कोई बाइबल नहीं है, और उन्होंने उस छोटे लड़के को पाया जिसके पास बाइबल थी, और उसने आकर और यशाया 53:5 को पढ़ा। वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे पापों के लिए कुचला गया, और उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ कप्तान, मेरी माँ हमेशा इसे कैसे पढ़ती थी। कहा वह उसने जिस तरह से लिखा है, वह विली प्रूविट के पापों के लिए घायल हुआ और उसे विली प्रूविट के लिए ताड़ना मिली थी, और ये सब चीजें जो उसने की थी विली प्रूविट के लिए थी जो उसका नाम था। बूढ़े कप्तान ने कहा, मुझे ये अच्छा लगा, क्या तुम इसमें मेरे नाम को पढ़ सकते हो? उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। और उसने कहा वह जॉन कॉटर्स के पापों के लिए घायल हुआ और उसे जॉन कॉटर्स के अपराधों के हेतु कुचला गया और उसके कोड़े खाने से जॉन कॉटर्स चंगा हुआ था। उसने कहा, मैं इसे देखता हूँ, और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। देखा, इसमें अपना नाम पढ़े, विलियम ब्रेनम के अपराधों के लिए वो घायल हुआ था, विलियम ब्रेनम के पापों के लिए उसे कुचला गया था, उसने इसे मेरे लिए किया और उसने तुम्हारे लिए इसे किया। इसमें अपने नाम को पढ़ें। ठीक है, वैसे ही मैं अपने लोगों के लिए वचनों को लाना चाहता हूँ। यही वो है जो उसने किसी और के लिए किया जो उसका पालन करते थे। उसने जो किसी और के लिए किया वो उस कारण के लिए सत्य था, और उसने जो किसी और के लिए किया वो उस कारण के लिए असत्य था। तब आप अपना नाम इसमें पढ़ लेना। यदि आप वहाँ पर रहते तो आप किसी और खड़े होते, और याद रखें, आपको आज भी सौभाग्य मिला है उसी तरह से खड़े रहने के लिए। जब नूह उस वचन के लिए निंदा को लिया जो परमेश्वर ने उससे बातें की थी, नूह वहाँ पर एक निंदा थी। नूह एक वैज्ञानिक युग में रहता था जहाँ पर एक वैज्ञानिक उपलब्धियाँ थी जो वे निर्माण करने में सक्षम थे। वे उन चीजों से ऊपर थे जो हमने आज निर्मित किया है। वे अधिक तेज थे, अधिक बुद्धिमान थे, उनका विज्ञान हमारे से ज्यादा विकसित था। और बस याद रखें, उसे वचन के लिए निंदा को लेना पड़ा जिसे उसने उपहास उड़ाने वालों के सामने 120 वर्ष तक के प्रचार किया। उनके बड़े बड़े वैज्ञानिक तरीकों से उन्हें ये साबित हुआ कि आसमान में कोई बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी नूह ने प्रभु के वचन को सुना था, और ये उनके धारणा से विपरीत था। तो इससे पहले उसका जीवन बचाया जा सके, उसे सामना करना ही है, उसकी निंदा को सहना ही है, जिस बात से इन उपवास करने वालों ने उसे अपमानित किया था। ओह, इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्हें उस दीन बूढ़े प्रचारक के प्रति खेद होना चाहिए था। उन्होंने उसे ऐसे दूर नहीं रखा या ऐसे ही कुछ, क्योंकि हो सकता है उस दिन उस प्रकार के बहुत से घर नहीं थे। वह हानि पहुंचाने वाला नहीं था, वह किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कहते थे, आगे जाएं, उस पहाड़ी के किनारे पर बूढ़ा कट्टरपंथी एक जहाज को बना रहा है जहां कोई पानी नहीं है। ओह हाँ, बेचारा बूढ़ा आदमी। लेकिन और कह रहे हैं, तुम पानी को कहां से लोगे अपनी नाव को तैराने के लिए? नूह, ये आसमान से गिर रहा है। बकवास, हम रडार के द्वारा चंद्रमा और सितारों पर तेजी से चढ़ सकते हैं। जो भी उनके पास था, वहाँ पर कोई बारिश नहीं है। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि वह वहाँ कुछ बारिश को भेजने जा रहा है। वो इसे कैसे करने जा रहा है? वो करना उसका काम है। केवल एक ही चीज है जो मुझे करना है, कि आपको यहाँ से निकलने की चेतावनी दूँ। यह लगभग अभी भी वैसा ही है। आग कहाँ से आ रही है भाई? आज नूह के समय के मुकाबले थोड़ा सा स्पष्ट है। हम देख चुके हैं कि यह कहाँ पर है। यह आने के लिए तैयार है, बस इतना ही है। विज्ञान ने पहले से ही, इस बार कोई बहाना है ही नहीं, क्योंकि विज्ञान ने इसका कारण पहले से ढूंढ लिया है। जी हाँ श्रीमान, तो हम पाते हैं कि यह सचमुच एक बात थी। तो उन्हें उस बेचारे बूढ़े उपदेशक के प्रति खेद महसूस हुआ, और बस उसे जाने दिया। यह एक अजीब बात थी। शायद उन लोगों के लिए यह सोचकर कि एक मनुष्य जिसे बुद्धिमान होना चाहिए था और उस परमेश्वर पर विश्वास करे जो आकाश और धरती का सृष्टि करता है और कुछ तो करेगा या कुछ ऐसा कहेगा जो वो करने जा रहा था जो उनके सोचने के तरीके के विपरीत था, जो उनकी सोच थी। हो सकता है आप इसे नहीं समझे। देखो, उन्होंने सोचा कि वे हर एक प्राकृतिक चीज को उनके विज्ञान के द्वारा साबित कर सकते हैं। क्या यह इसी प्रकार का संसार नहीं है जिसमें आज हम रह रहे हैं, एक बौद्धिक विज्ञान से भरा हुआ शिक्षात्मक संसार? और जो कुछ भी वे साबित कर सके वह गलत था। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कभी भी नहीं बोल सकता था जिसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि यह वहाँ पर नहीं था। अब उनके पास आज भी यही विचार है। यदि आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपको कैंसर है, आपको मरना है, और विज्ञान साबित करता है कि आपको कैंसर है और यह एक अग्रिम चरण में है, क्योंकि कुछ भी अलग सोचना ना समझ है, क्योंकि आप मर जाओगे, बस ऐसा ही है। विज्ञान कहता है कि आप मरने जा रहे हैं, उन्होंने आपकी जांच की है और सब ऐसा ही है, तुम मर जाओगे। और वे सोचते हैं यह पागलपन है। यदि आप यह कहने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है, देखो जैसा ये था, आपको उस निंदा के लिए खड़े रहना है। वे कहते हैं, यदि डॉक्टर यहाँ कहता है हमने इसमें देखा है और कैंसर बढ़ चुका है, हमने आपको खुला बता दिया है, यह पूरी तरह से आपके शरीर में फैला है और आपके हृदय में है, आपके फेफड़ों में, आपके गुर्दों में, पूरी तरह से, यह असंभव है। सो आप देखते हैं, जब आप कहते हैं लेकिन कुछ भी हो वो जीने जा रहा है, वे कहते हैं ठीक है, बेचारा व्यक्ति, बस उसे ऐसे ही छोड़ दो। मुझे वो रात याद है, बिल हॉल, भाई हॉल, बिल हॉल जो मिलटाउन कलिसिया में थे, आप में से बहुत से लोगों को वो मामला याद होगा। और जब वो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मेरी पत्नी, सास और मैं यहाँ चले गए। उसने एक लड़की से शादी की थी जो एक बहन थी, मैं सोचता हूँ जॉर्ज कब की, जो शहर के मेयर थे या यहाँ के न्यायाधीश थे, वह उसका पत्नी का भाई था। वे उसे मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए। मिलटाउन के डॉक्टर, न्यू अल्बानी के डॉक्टर ने उसके बीमारी को गुर्दे के कैंसर के रूप में पहचाना। तो मैं श्रीमती हॉल को देखने के लिए वहाँ पर गया और उस भाई को पीलिया हो गया था और वो पूरी तरह से पीला पड़ गया था। और मैंने कहा, तो मुझे लगता है कि वो मर जाएंगे। और मैंने कहा, उसने कहा, भाई बिल, क्या कोई रास्ता है, क्या आप परमेश्वर से सुन सकते हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता बेन हॉल, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने प्रार्थना की और मैं वापस घर चला गया और प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब मैं वापस चला गया अगले दिन और मैंने फिर से प्रार्थना की और बहन ने कहा, क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं? मैंने कहा, ठीक है, हमारे परिवार के डॉक्टर डॉक्टर सैम एडियर हैं, जो यहाँ नीचे जेफरसन मिले में है, वो उसका पिता हमारे परिवार का डॉक्टर था। जवान सैम और मैं हमेशा ही जिगरी दोस्त रहे हैं और हम एक ही समय में स्कूल के लिए गए, एक साथ पले बड़े थे। हम हमेशा जब कुछ भी गलत होता था तो हम उसके पास जाते थे। उसने कहा, सोचती हूँ क्या वह बिल हॉल को देखने आएंगे, जो उसका पति था। मैंने कहा, मैं उससे पूछूंगा। तो सैम ने मुझसे कहा, बिली, यदि डॉक्टर ने कहा कि उसे कैंसर है, कहा मुझे करने के लिए केवल एक ही चीज है, मैं उसे किसी एक विशेषज्ञ के पास भेजूंगा जो मुझसे ज्यादा होशियार हो और हम एक्सरे को लेंगे और हम उसे और अधिक परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। हमने उसे न्यू अल्बानी में भेजा और वहाँ डॉक्टर ने एक्सरे को निकाला, उसे लुइसविले ले गए और उसकी जांच की, उसे एक एम्बुलेंस में लेकर गए और उसे वापस लेकर आए। तो अवश्य ही उसने श्रीमती हॉल को नहीं बताया होगा कि उसकी क्या तकलीफ थी। तो उसने मुझे फोन किया, उसने कहा वह मरने जा रहा है, कहा आपका प्रचारक मित्र, कहा लुइसविले के विशेषज्ञ ने मुझे अभी फोन किया और कहा डॉक्टर ने निरीक्षण किया वहाँ मिलटाउन में और न्यू अल्बानी के डॉक्टर सही प्रकार का निरीक्षण किया और कहा यह गुर्दे का कैंसर है और यह बढ़ चुका है और बिली हम उस व्यक्ति के गुर्दे को काट कर बाहर नहीं निकाल सकते हैं और उसे जीवित रखें। कहा वह मरने जा रहा है और यदि वह एक प्रचारक है तो उसे तैयार रहना चाहिए। मैंने कहा सवाल यह नहीं है, लेकिन वो लगभग 50 से ज्यादा उम्र का नहीं है, सो अब भी उसके पास फिर भी प्रचार करने के लिए बहुत सारा जीवन है। और मैंने कहा तो यदि वह मरने जा रहा है तब इससे मामला खत्म हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर सैम। और मैं नीचे गया और श्रीमती हॉल को फोन किया और मैंने उसे बताया। मैंने कहा श्रीमती हॉल, सैम ने कहा कि लुइस विले के निरीक्षण में वही बात सामने आई है जैसे यह न्यू अल्बानी और मिल्टन में था। वो व्यक्ति मर रहा है, भाई हॉल मरने जा रहे हैं और उसे गुर्दे में कैंसर है और यह बढ़ चुका है। और सो उसने रोना आरंभ किया। मैंने मुड़कर उसके साथ प्रार्थना की और वह तब अपने आप में इतना खो गया था, यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं था कि मैं कमरे में था। तो मैं वापस आ गया और उन दिनों में बहुत से लोग घर में आए थे, वहाँ कोई और कार्य क्षेत्र में नहीं था, यह बहुत अधिक दूषित नहीं हुआ था और लोग हर जगह से आ रहे थे। मैं थोड़ा आराम करना चाहता था तो मैं सोने चला गया। सुबह जल्दी उठ गया, लगभग 2:30 या 3 बजे। भाई वुड अभी तक उस रास्ते पर नहीं आए थे और मैंने रास्ते पर देखा और वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने अपनी पुरानी टोपी को लिया और मेरे निजी कमरे में गया और मेरी .22 पिस्तौल को लिया और मुझे बाहर निकलना था और गिलहरी का शिकार करने जाना था। मैं लगभग 8 बजे तक पहुंच गया और फिर कहीं तो एक पेड़ के नीचे लेट गया और मैंने थोड़ी सी नींद ली। आपको यह घर के आसपास नहीं मिल सकती। मैंने अपनी टोपी को लिया और अपने कमरे की ओर जाना आरंभ किया। दीवार पर एक सेब लटक रहा था और यह सबसे सड़ा हुआ सेब था, यह कीड़ों का खाया हुआ था और यह जटिल हुआ था और यह पूरी तरह से पपड़ीदार हो गया था। और मैंने सोचा मेरा ने इसे दीवार पर किस लिए लटका दिया है। और मैंने फिर से देखा और यह दीवार पर नहीं था, यह हवा में लटक रहा था। मैंने अपनी पुरानी टोपी को झटके से उतारा, पिस्तौल को कोने में रख दिया और अपने घुटनों में गिर गया। मैंने कहा, हे परमेश्वर, आपके पास अपने दास को बताने के लिए क्या है? नीचे एक और सेब उतर कर आया, एक और, जब तक 4 या 5 सेब नहीं हो गए। मैं अब भूल गया था कि यह कौन सा था वह लटका हुआ। फिर एक बहुत ही बड़ा सुंदर सेब, इसमें धारियां थी, बस एक बहुत ही बड़ा ताजा दिखने वाला सेब नीचे आ गया और उन अन्य सड़े हुए दिखने वाले सेब को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसने कहा, उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कहा, जाओ बिल हॉल को बताओ कि वो नहीं मरेगा, वह जिएगा। ओह, जितनी जल्दी मैं दौड़ सकता था मैं दौड़ा और मैंने कहा, श्रीमती हॉल, मेरे पास यहोवा योग कहता वाला वचन है, वो जिएगा। और उसने मुझे सुना और वह रोने की कोशिश कर रहा था और वह और बात नहीं कर सका। मैं वापस आ गया और सैम को फोन किया और मैंने कहा, सैम, हमारा भाई जिएगा। उसने कहा, वह इस तरह कैसे जी सकता है? मैंने कहा, यह सोचना मेरा काम नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, बात खत्म। वो आज जीवित है, यह लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था, वैसे ही तंदुरुस्त और स्वस्थ। तब उसके बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसने फिर से विवाह कर लिया। जॉर्ज राइट के साथ ऐसा ही हुआ और हम बहुत से और लोगों के लिए कह सकते हैं जो हम बता सकते हैं। यह क्या है? ये निंदा के लिए खड़ा होना है। वे हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मुझे याद है कि 37 के बाढ़ से पहले मैं वहाँ फॉल्स सिटी ट्रांसफर कंपनी के साथ खड़ा था और उन्हें बता रहा था वहाँ 32 फीट पानी होने जा रहा था। मेरा मानना है कि यह स्प्रिंग मार्क पर था। उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, बेचारा बिल्ली, मुझे लगता है वह बच्चा है। मैं तब केवल एक लड़का ही था। उसने कहा, बिल्ली एक अच्छा बच्चा है, यह एक शर्म की बात है कि वह सब बातों को मिला देता है। मैंने नहीं मिलाया था, मैंने इसमें बपतिस्मा लिया था, मैंने बातों को नहीं मिलाया, मैं बस अंदर था और यह उसी तरह से घटित हुआ था। मैं जब से बात कर रहा था मैंने देखा कि बेन हेटी राइट, मैं सोचता हूँ वो वहाँ पीछे बैठी हुई है, वो बिल हॉल के विषय के बारे में याद करती है। बहुत से लोग हैं यहाँ, कितने लोग आज सुबह उपस्थित है जो इस विषय को याद करते हैं? ओ प्रभु, निश्चय ही आप बहुत से लोग याद करते हैं। अब वे हमारे लिए खेद महसूस करते हैं, किसी के लिए भी खेदित महसूस करते हैं जो वचन को पकड़े रहने की कोशिश करते हैं मजाक उड़ाने वालों के दिनों में। लेकिन याद रखें, निंदा को आना ही है, यह हमेशा इसी तरह से रहा है। उन्होंने अवश्य ही सोचा होगा जैसा कि उन्होंने तब किया, वो परमेश्वर कुछ भी वैज्ञानिक रूप से साबित करने के बाद वो परमेश्वर कुछ भी विज्ञान के विपरीत नहीं कहेगा। अच्छा, यही है वो जो उसे परमेश्वर बनाता है। यदि वो केवल विज्ञान के अनुसार चला जाता है तो यह उससे अधिक नहीं होगा, बस जो मनुष्य हासिल कर सकता है। लेकिन वो परमेश्वर है, वो विज्ञान का सृष्टि करता है, वो कर सकता है जो वो चाहता है। उन्होंने अवश्य ही सोचा होगा, बेचारा बूढ़ा नूह, ठीक है, उस बूढ़े मनुष्य को अकेला ही रहने दो, उन सारे मजे को छोड़ रहा है जो इन दिनों में हमारे पास है, तो उसे हमेशा ही अकेला रहने दो। ये लगभग अब भी वैसा ही है। लेकिन अब मैं ठीक यहाँ एक और बात को कहना चाहता हूँ। अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ यदि हम उस दिन में रहते थे तो क्या हम उसी तरह खड़े रहे थे जैसे नूह खड़ा था? क्या हम कर सकते हैं और निंदा के लिए खड़े रहने की इच्छा रखते हैं जो सत्य के लिए होती है? जब वे सारे दुनिया में लाखों लोग थे, उस समय वहाँ केवल नूह और उसका परिवार ही था जो उस सत्य के लिए खड़ा था। क्या आपने इसके बारे में सोचा? केवल वही मनुष्य और उसके तीन बेटे और उसके बेटों की पत्नियां, उसकी पत्नी, केवल वे ही एक थे जो सत्य के लिए खड़े थे। लेकिन उनके पास यहोवा यो कहता वाला वचन था। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या हम इसे फिर से सोच सकते हैं? मुझे इन बच्चों के उपहारों की वजह से जल्दी करना पड़ेगा। अब्राहम शब्द का अर्थ है बहुतों का पिता, उसे एक राष्ट्रों का पिता बनाता है। अब अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना। अब्राहम एक भविष्यवक्ता था और उसने परमेश्वर के वचन को सुना, और हम अब्राहम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर के वचन को थामने के लिए, कैसे वह खुद उसके रिश्तेदारों से अलग हो गया। अब्राहम के लिए यह कितना मुश्किल था। उसे वहाँ लाया गया, बाबिल से वहाँ आ गया, वहाँ नीचे उस शिनार देश में, और वो कसदियों की भूमि उर शहर में, जहाँ उसके सभी सहयोगी थे, वे लोग जो उसके साथ कलीसिया जाते थे और इत्यादि। लेकिन परमेश्वर ने कहा, खुद को अलग करो। ओह प्रभु, ये क्या ही भयानक बात थी, उन सबको छोड़ना, जिन प्रिय लोगों को वो पकड़े हुए था, वो सब कुछ जो उसके लिए वास्तविक था, जिन प्रिय लोगों को वो पकड़े हुए था, और परमेश्वर ने उसे बताया खुद को अलग करो, और उसे एक बहुत ही अजीब बात को देता है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी के जरिए से एक बालक होने जा रहा है, और वो 75 वर्ष का था और वो 65 वर्ष की थी। यह बंद हो गया था जैसे महिलाओं के साथ होता है, महिलाओं को बच्चों को लाने के लिए वर्षों तक होते थे। और यहाँ उसके साथ रहने के बाद जब वो एक लड़की थी, क्योंकि वो उसकी दूर की बहन थी, और फिर वह कैसे कभी बालक को ला सकती थी? और अब आप अब्राहम के लिए कल्पना कर सकते हैं, वो उसके मिलने जुलने वालों के बीच जाकर और कह रहा है, हमें एक बालक होने जा रहा है, सारा और मुझे। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं? क्यों? लोगों ने कहा, बेचारा बूढ़ा मनुष्य, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, यह एक निंदा है। लेकिन अब्राहम इसे पकड़े हुए था, और जब वो 100 वर्ष का बूढ़ा हो गया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कभी भी डगमगाया नहीं, वो अब भी निंदा के लिए खड़ा था, निश्चय होकर इसे पकड़े हुए था। आपने वहाँ अंतर को देखा? सारा ने अब्राहम को, मेरा मतलब, या परमेश्वर को देने की कोशिश की, जो उसके द्वारा एक थोड़ी सी सहायता को देने की। उसने सोचा, आप ये जानते हैं कि अन्यथा तब परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी। अब तुम जानते हो मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, लेकिन यहाँ हाजिरा एक सुंदर स्त्री है, अब्राहम को भी उससे विवाह करने में कोई संकोच नहीं होगा। सो आप जानते हैं, इससे परमेश्वर को सहायता मिलेगी, इससे परमेश्वर को सहायता मिलेगी, क्योंकि यहाँ हाजिरा, वह शायद केवल 20 वर्ष की उम्र की है, वह मेरी दासी है, और आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगी, मैं उसे अपने पति को दे दूंगी एक पत्नी होने के लिए, क्योंकि बहुविवाह वैध था। तो उसने कहा, मैं उसे दे दूंगी और उसे मेरे पति के द्वारा एक बालक होगा, और फिर मैं बालक को ले लूंगी, और वही वो एक है जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। आप देखें, हम हमेशा कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, हम कुछ तो अपने आप से करते हैं। हो सकता है शायद ये अच्छा होगा, वो हो सकता है वो दिखने में सुंदर रही हो, यह दिखने में बहुत ही अच्छा लग सकता है, लेकिन यह वचन के अनुसार नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बालक सारा के जरिए आएगा। याद है कि उसने छोटे झुंड के बारे में क्या कहा, यह चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं, जैसा ये नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा, जिसमें कुछ ही, यहाँ तक कि 8 प्राण ही बचाए गए थे, वे वचन टल नहीं सकते हैं। तो आइए हम खुद को नजदीक से देखें और वचन के साथ बने रहें। ठीक है, समझे, लोग हमेशा कुछ तो निर्माण करने का प्रयास करते हैं परमेश्वर के रचनात्मक इच्छा के स्थान को लेने के लिए। आप देखते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, और हो सकता है कलीसिया के सामने पहले ही, आप जानते हैं कि आप भेड़ों से नहीं पूछ सकते, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऊन का निर्माण करोगे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब एक बकरी ऊन का निर्माण नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी प्रकृति उसे नहीं करने देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक बकरी पर एक भेड़ की ऊन को बांधने की कोशिश करें, यह काम नहीं करेगा। एक बकरी ऊन का निर्माण नहीं कर सकती है, और एक भेड़ बालों का निर्माण नहीं करता है, लेकिन उनके पास ऊन होता है, क्योंकि वह एक भेड़ है। यही है वो जो उसे बनाता है। वह निर्माण नहीं करता। हमें आत्मा के फलों का निर्माण नहीं करना चाहिए, हमें तो आत्मा के फल फलना चाहिए। सेब का पेड़ सेबों का निर्माण नहीं करता है, यह तो केवल इसमें फलता है, क्योंकि यह तो एक सेब का पेड़ होता है। और यदि हम कुछ भी निर्माण करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं इस कार्य के लिए सहायता करूंगा, मैं शिक्षा संस्था में 10 साल के लिए अध्ययन करूंगा, मैं यह सीखूंगा, वो या कुछ और मेरे बैचलर ऑफ आर्ट और मेरी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की सहायता करूंगा, यह काम नहीं करेगा। परमेश्वर पहले से ठहराए जाने के द्वारा बुलाता है, जिसे वो चाहता है वो उसे राज्य को देता है, जिसे वो उसे देना चाहता है। हमने इसे नबूकदनेस्सर के द्वारा सीखा, हमने यर्मिया के द्वारा सीखा, जब परमेश्वर ने उसे यह प्रभु के वचन के द्वारा बताया कि एक समय आने वाला था, इज़राइल 70 वर्षों के लिए बाबुल के अंदर ले जाया जाएगा। यहाँ एक और भविष्यवक्ता आता है, उसने पहले से ही उसे बताया, कहा अब तुम्हारे पास भविष्यवक्ता होंगे जो उठ खड़े होंगे, और वे तुम्हें वहाँ नीचे बाबुल में मिलेंगे, जो उठ खड़े होंगे और स्वप्न देखने वाले और भविष्यवक्ता, और इसके विपरीत भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन लोगों से कहना कि उन लोगों की ना सुने। और एक व्यक्ति ऊपर आता है जो भविष्यवक्ताओं में से एक था, जिसका नाम हनन्याह था, और जब यर्मिया उसकी गर्दन पर जुए को लिए हुए वहाँ पर खड़ा था, वहाँ हनन्याह आता है और कहा यहोवा यो कहता है, इन पूर्व 2 वर्षों में प्रभु के सारे पात्र, अब मूल रूप से यह बहुत अच्छा दिखाई दिया, परमेश्वर उसके लोगों को आशीष देने जा रहा है, वह ठीक पूरी तरह से हर एक चीज को 2 वर्षों में वापस लाने जा रहा है। और बाइबल ने कहा, यहाँ तक कि यर्मिया भविष्यवक्ता ने भी कहा, आमीन आमीन हनन्याह, होने पाए प्रभु आपके शब्दों को पूरा करे। लेकिन हमें कुछ तो सोचना है हनन्याह, हमसे पहले भी भविष्यवक्ता रहे हैं, और उन्होंने युद्ध के महान राष्ट्रों के खिलाफ भविष्यवाणी की और इत्यादि, लेकिन याद रखना, भविष्यवक्ता उसकी भविष्यवाणी के प्रकट होने के बाद ही जाना जाता है। देखा, तब हनन्याह उठकर यर्मिया की गर्दन से जुए को पकड़कर सारे याजकों और सभा के सामने नीचे गिरा दिया। लगभग हो सकता है वहाँ 1.5 लाख लोग थे, और उसने जुए को लिया जो परमेश्वर ने यर्मिया की गर्दन पर एक चिन्ह के लिए रखा था, और हनन्याह ने उसे तोड़कर टुकड़े कर दिया और उसे उसके पैरों पर फेंक दिया, केवल जोश में आकर, और कहा यहोवा यो कहता है, 2 वर्षों में वे वापस आ जाएंगे। यर्मिया ने उसे तब देखा, यह वचन के विपरीत था, तो वो तब वहाँ से चला गया, और परमेश्वर ने कहा वापस जाकर और उसे कहो, कहा मैंने कभी भी उससे बात नहीं की है। वह केवल जोश में था, वो अपना खुद का प्रभाव डालता था, समझे, वह कभी भी रुका नहीं जब तक उसने वास्तव में देख नहीं लिया और उसे जान नहीं लिया कि यह वो नहीं था, यह तो परमेश्वर था जो बोल रहा था। वो वापस चला गया, वो पूरी तरह से जोश में था। यदि हम इसे आज दूसरे देशों में देखते हैं, हमारी टेपों में से एक, जिसे हाल ही में एक घर में चलाया गया, जहां सेवकों के एक झुंड ने ठीक तभी स्वीकार कर लिया, और वे यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, और एक व्यक्ति कमरे में उठकर खड़ा हो गया, जिसने अन्य भाषा में बात की और कहा यहोवा यो कहता है, आपको जो मिला है उसे पकड़े रहो, बस जारी रखें और आगे बढ़ते चलें, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, यदि परमेश्वर ने इसे कहा, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। आप देखते हैं, इसकी वचन के साथ जांच नहीं की गई, इसे पहले वचन को लेना है, वहाँ आप हैं, यह वचन के विपरीत था। यहाँ यर्मयाह वापस आता है जो अभिषिक्त भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसे बताया, कहा मैं जानता हूँ कि हनन्याह ने तुम्हारी गर्दन पर से लकड़ी के जुए को तोड़ दिया जिसे मैंने रखा, लेकिन मैं लोहे में से एक जुए को बनाऊंगा। उसने कहा और ये सारे राष्ट्र जो मेरे दास नबूकदनेस्सर की सेवा करने के लिए चले गए हैं, और वह एक मूर्ति पूजक था। देखा, और इसराइल अपने सारे बलिदान को चढ़ाते थे लेकिन वे नहीं थे, समझे। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की कि वो आशीष को देगा, लेकिन वे आशीषें शर्तों के अंतर्गत मिलेगी और आपको उन शर्तों को पूरा करना होगा उस काम को करने के लिए। कुछ समय पहले एक प्यारी लड़की के साथ बैठा हुआ था। सबसे पहले मैंने उस परिवार के माध्यम से खोजा यह देखने के लिए कि क्या कुछ गलत है या नहीं। परमेश्वर चंगा करेगा, लेकिन यह शर्तों के अंतर्गत है। देखा, केवल एक चीज है जो मैंने देखा। माँ डरी हुई थी कि दवा लेना यह गलत था। मैंने कहा ऐसा मत सोचो बहन, इसे अपने दिमाग से निकाल दो, बालक के साथ सीधे आगे बढ़ो, उसे दवा दे दो, परमेश्वर इसे ज्ञात करवाएगा। देखा, अब लेकिन बात यह है कि देखना है, जानना है, और फिर क्या यह यहोवा यो कहता वाला वचन है तो ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग वे कुछ तो निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, हाजिरा और सारा अब्राहम की सहायता करने के लिए परमेश्वर की सहायता करते हैं ताकि उसकी प्रतिज्ञा सत्य हो जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने का कोई भी तरीका है ही नहीं, यह हर एक बात के विपरीत है। परमेश्वर का वचन किसी भी तरह घटित होने जा रहा है। आपको केवल वचन पर खड़ा होना है और कहना है यह इसी तरह से है, और वचन को पकड़े रहना है। अब ध्यान दें, उसके वचन के स्थान को लेने के लिए कुछ तो निर्माण करना। हो सकता है अब्राहम के मित्र भी, यदि हमने कभी ध्यान दिया हो सकता है अब्राहम के मित्र उसके पास आए हों और कहा हो तो ठीक है, राष्ट्रों के पिता अभी तुम्हारी कितनी संतानें हैं, जब वो 100 वर्ष का था। कहो राष्ट्रों के पिता, बहुतों के पिता, अभी तुम्हारी कितनी संतानें हैं, उपहास उड़ाने वाले। अब क्या आपने उस समय को नहीं देखा है? क्या हमने इसे देखा नहीं है जब कभी कभी हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और ऐसा नहीं होता है? वे कहते हैं यहाँ वो एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, वह अंधा है, वह बहरा है, वह गूंगा है, वह बीमार है, उसने ऐसा किया है, वहाँ जाओ और उसे चंगा करो, तुम दैविक चंगाई करने वालों, तब हम इसे विश्वास करेंगे। क्या उन्हें पता है कि यह वही शैतान है जिसने कहा क्रूस से नीचे उतर करा और मैं तुम पर विश्वास करूंगा, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और मैं इसे विश्वास करूंगा। देखा, वही शैतान जिसने हमारे प्रभु की आंखों के चारों ओर एक कपड़े के टुकड़े को बांध दिया और उसे एक छड़ी से सिर पर मारा और कहा अब यदि तू एक भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे मारा और हम तेरा विश्वास करेंगे। तो आप जानते हैं कि वो जानता था कि उसे किसने मारा। वह उन पत्थरों को रोटी में बदल सकता था या वह क्रूस से नीचे आ सकता था, लेकिन यदि वो करता था तो हम आज क्या होते। देखा, वे परमेश्वर की योजना के बारे में नहीं जानते हैं। आपको पता लगाना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया है। अब मुझे जल्दी करना चाहिए। अब उन्होंने हो सकता है कहा होगा राष्ट्रों के पिता, हमने आपको 25 वर्ष पहले कहते सुना है कि आपको सारा के जरिए से एक बालक होने वाला था और उसमें से लोगों के राष्ट्र आने वाले थे, तब इस समय तुम्हारे पास कितनी संतानें हैं राष्ट्रों के पिता। देखा, ऐसा वही पुराना निंदा करने वाला आत्मा जो निंदा करेगा। अब्राहम ने क्या किया? कहा वो प्रतिज्ञा पर डगमगाए नहीं, अविश्वास में से होकर, क्यों यहाँ आपने फलाना फलाना के लिए प्रार्थना की और वे चंगे नहीं हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं आज रात 10,000 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और 10,000 सुबह मर जाते हैं, तो फिर भी मैं कल रात को बीमारों को अभिषेक करूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ऐसा कहता है, ये जरा भी नहीं रुकता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मुझे विश्वास है, निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब भी क्या कहते हैं, लेकिन वे मजाक उड़ाएंगे, यही वचन के लिए निंदा है। अब्राहम परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा, आखिरकार यह पूरा हुआ था। ओह प्रभु, बांझपन के मजाक उड़ाने को देखें, उपहास किया गया और पहले निंदा की गई। उनके पास उसे बांझ होने की निंदा को लेने के लिए उन सारे वर्षों में खड़ा रहना था। वो लगभग 100 वर्ष की आयु की थी, वह 90 वर्ष की थी। परमेश्वर के वचन के साथ जिसने कहा कि वो राजकुमारी भी होगी, वो इस एक बालक की माँ होगी, और वो और अब्राहम बांझपन और उन दोनों के शरीर बेजान भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वचन पर कभी भी संदेह नहीं किया, जरा भी नहीं, लेकिन उन्हें पहले खड़ा होना था और बाद में हालेलुया परमेश्वर ने उसका वचन रखा उस अंधकार के समय में इसहाक का जन्म हुआ था और उसका बीज समुद्र के बालू के जैसे या आकाश के सितारों के जैसा होगा। देखा, परमेश्वर हमेशा उसके वचन का उत्तर देता है। हाँ, पहले बांझपन, उसके बाद इसहाक। वैसे ही जकरिया और एलीशिबा, वो बूढ़ा पुरुष और बूढ़ी महिला थी, वे अभी भी पकड़े हुए थे। और जब जकरिया वहाँ पर आता है और उसकी पटिया पर लिख कर बता सका और कहा, एक दूत ने मुझसे मुलाकात की, मुझे बताया कि मैं यहाँ अपनी बूढ़ी पत्नी एलीशिबा से बालक को लाऊंगा, मैं अब बात नहीं कर सकता हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं बालक के जन्म होने के दिन तक के गूंगा बना रहूंगा। लेकिन एक बालक आ रहा है और वह सबसे उच्च भविष्यवक्ता बनने जा रहा है, वह सुबह के तारे का परिचय करवाएगा, वह मसीहा का एक अग्रदूत होगा। यह भला ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ने कहा, बेचारा बूढ़ा मनुष्य, ओह मुझे लगता है कि उसके दिमाग में थोड़ा सा असर हो गया है, आप जानते हैं कुछ तो थोड़ा हो गया है। लेकिन वहाँ उस बूढ़ी एलीशिबा को देखो जो लगभग 80 वर्ष के आसपास है, और जकरियास को देखो जिस तरह से बूढ़ा है और हिल रहा है, और फिर वह इस तरह की बात कहता है, खैर बेचारा बूढ़ा मनुष्य। लेकिन उसके पास परमेश्वर का वचन था। इस तरह की निंदा उसने खुद को कई दिनों तक छिपाए रखा, लेकिन वह वचन के साथ बना रहा। ओह प्रभु, लोकप्रियता को अस्वीकार करते हुए, लोकप्रिय विचार को अस्वीकार करते हुए, उस दिन की शिष्टता को अस्वीकार कर दिया और उनके दिन की शैलियों और चीजों को अस्वीकार किया। उन्होंने इसे अस्वीकार किया, उन्होंने अविश्वासियों की भीड़ के साथ चलने से अस्वीकार किया, उन्होंने संसार की चीजों को अस्वीकार कर दिया। उन्हें ऐसा करना था ताकि परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें, उन्हें इसे करना था। उसी तरह से आज है, आप हर एक चीज से अलग होते हैं सिवाय परमेश्वर और आप। ये ऐसा नहीं है कि कलीसिया क्या करता है, यह तो आप परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, समझे, यह तो आप हैं एक व्यक्तिगत रूप में। जी हाँ, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसे क्या दिया। जब यीशु खुद आया, जकरियास चला गया था, एलीशिबा भी चली गई, लेकिन जब उनका पुत्र जंगल में यहोवा यह कहता वाला वचन के साथ आया, यीशु के साथ, यीशु ने कहा, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से उस पुरुष से कोई बड़ा नहीं हुआ। आमीन। क्या उसने बाजपन की निंदा को सहा, वह वचन पर रुकी रही और ऐसे पुत्र को जन्म दिया। पहले के उस सारा की तरह, पहले के उस अब्राहम की तरह बूढ़े दंपति इसे पकड़े हुए थे। देखो, जो ज्यादातर पैदा हुए थे समुद्र के रेत की तरह, संसार में लोगों की एक जाति भी नहीं जितने कि वे यहूदी हैं, समुद्र की रेत की तरह या आकाश के सितारे। क्या हुआ था? ये थोड़ी गिनती में हुआ, एक बालक। अब आप देखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक बालक, इसी ने सब कुछ ले लिया। ये एक बालक को लेता है ताकि राष्ट्र को हिला दे और मसीहा की ओर संकेत करता है। एक को ले लिया जो आज्ञाकारी है, यह सही है। परमेश्वर को सिर्फ एक मनुष्य की आवश्यकता है, यही वो सब है जो उसकी आवश्यकता है। कहीं तो उसकी एक आवाज हो सकती है, यही वो सब है जिसे वो चाहता है, एक मनुष्य को उसके नियंत्रण में ले। ओह, वो एक मनुष्य को लेने के लिए कितना पसंद करता है। उसने एक समय नूह को लिया, उसने एक समय एक मूसा को लिया, उसने एक यर्मिया को लिया, उसने एक एलिया को लिया, उसने एक एलिशा को लिया, उसने एक यूहन्ना को लिया। वह लेता है, उसे एक शिमशोन को लिया, जब तक वह एक मनुष्य को उसके नियंत्रण में ले सकता है, यही उसकी आवाज होती है, वो उसके जरिए से बात करता है, वह संसार को दोषी ठहरा सकता है। ओह प्रभु, किस तरह से परमेश्वर इच्छा को रखता और आगे बढ़ता है एक मनुष्य को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, कि मैं उसके जरिए से बात कर सकता हूँ, मैं अपनी आवाज को याद करवा सकता हूँ, भले ही उसे एक निंदा के लिए खड़ा रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी आवाज को याद करवाऊंगा, समझे। ओह जी हाँ, पहले बांझपन, बांझ होना है, बांझपन की निंदा को लेने के लिए खड़ा रहना है। सारा को इसके लिए खड़ा रहना था, वैसे ही जकरिया और एलीशिबा को भी इसके लिए खड़ा रहना था। देखो आज, अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, आज वैश्य की संतानों की ओर देखें, उसने राष्ट्रों को संप्रदाय के राजनीतिक शासन के नीचे ले लिया है, वैश्य और उसकी पुत्रियां। देखो क्या एक संप्रदाय की पीढ़ी बढ़ गई है और धर्मी कितने कम हैं। आप चिंता न करें, वचन के साथ बने रहें। ये ठीक है, आपका उपहास उड़ाया जाएगा, पवित्र पाखंडी कहेंगे आपको, वो सब कहकर बुलाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का बुरा नाम, लेकिन ठीक वही बने रहें, ये वो वचन है। वचन के लिए निंदा को लेना यही वो चीज है जो वे आपके बारे में कहेंगे। एक जवान पुरुष, वो आज सुबह यहाँ हो सकता है, वो मेरा एक मित्र है, जिम पोल, नौजवान जिम, उसके लोग। उससे एक दिन पूछा गया था, तो उसने यह बपतिस्मा लिया था। किसी ने उससे कहा, यदि तुम एक कलीसिया में बपतिस्मा लेने जा रहे थे तो तुम किसी एक बड़ी कलीसिया में क्यों नहीं गए? देखा, लेकिन उसने उजाले को देखा, ऐसा ही था। समझे, अधर्मी की संतान धर्मी की संतान से कहीं अधिक है। जी हाँ, तो ठीक है, वे धर्मी कितने कम हैं। देखिए, नूह के दिन में कुछ मुट्ठी भर ही थे। देखा, देखो सदोम के दिनों में ये कितने थे। देखा, धर्मी कितने कम हैं। वैश्य की कितनी संतानें हैं, वो संतानों को बस किसी भी पुराने तरीके से लाती हैं, लेकिन वे सभी नाजायज संतान हैं। वैश्य वैश्य को लेकर आती है, कुत्ता कुत्ते को लेकर आता है, और मसीह अभिषिक्त को लेकर आता है, बाइबल धर्मी जन को लेकर आती है। इसलिए हमें छोटे झुंड होने के विचार के साथ खड़ा होना है। ये क्या ही अनुग्रह से भरी हुई बात है। उस महान इफिसियों की कलीसिया को देखो, इसमें केवल 12 लोग थे। जी हाँ, देखो आज हमारे पास क्या ही एक झुंड है उनके पक्ष में। हाँ, नूह के दिनों में केवल 8 ही प्राण थे, लूत के दिनों में केवल 5 ही थे, नहीं 4 थे, लूत और उसकी पत्नी, उनकी 2 पुत्रियाँ, और वह बाहर निकलने के बाद पत्थर के खम्भे में बदल गई पीछे मुड़कर देखने से। असल में उस दिन 3 बाहर आए थे, और यीशु ने कहा, जैसा कि उन दिनों में था, ये हमारे हित की बात है कि देखें और सावधान हो जाएं, धर्मी कितने कम हैं। लेकिन जैसे हमेशा ही उपहास उड़ाने वाले निंदा करेंगे, बांझ पहले बांझपन की निंदा के लिए खड़े रहें। प्रभु, मुझे अब जल्दी करना होगा, मैं नहीं इन बच्चों की सहायता करना चाहता हूँ, केवल थोड़ा सा मेरे साथ धीरज धरें, समझे। पुरुष हमेशा से ही एक जैसे होते हैं। अब मैं फिर से कुछ कहने जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि यह टेप दिया जा रहा है या नहीं, लेकिन यदि यह टेप पर है तो मैं चाहता हूँ कि आप टेप पर मुझे सुने। आप इसे भूलना मत, लेकिन इसका अध्ययन करना। मनुष्य अब ऐसा ही है जैसा वह हमेशा से रहा है। वो परमेश्वर की स्तुति करता है उसके लिए जो परमेश्वर ने किया है, आगे देखता है कि वह क्या करेगा, और अनदेखा करता है जो वो कर चुका है और कर रहा है। वह परमेश्वर की प्रशंसा करता है उसके लिए जो परमेश्वर ने किया है, वह आगे की ओर देखता है कि वह क्या करेगा, लेकिन वो उसे अनदेखा करता है जो परमेश्वर कर रहा है, और वहाँ पर वो सारी चीजों को खो देता है। मैं आशा करता हूँ कि वे इसे समझ जाएंगे। देखा, अनदेखा करते हैं जो वो कर रहा है। वो जानता है कि उसने क्या किया है, और वह प्रतिज्ञा को जानता है कि वह क्या करेगा, लेकिन वो यह देखने में असफल हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। ओह, आप जो पेंटिकॉस्टल हैं, क्या आप इसका उदाहरण नहीं है? आप आगे कुछ होने के लिए देख रहे हो, जैसे हमेशा ही ठीक आपके समय में हुआ है, और आप इसे नहीं जानते। कितनी ही बार उसने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है तुम्हें रखे, लेकिन तुमने नहीं चाहा। तुमने उसके वचन और उसकी आत्मा से अधिक अपने रीति रिवाजों और संप्रदायों के लिए सोचा। हाँ, मरियम के लिए क्या ही निंदा है, जैसा कि हम बंद कर रहे हैं। मरियम और यूसुफ के लिए उसके वचन के कारण क्या ही एक निंदा है। यह क्रिसमस का समय है। मैं योजना बना रहा था कि इस पर थोड़ा सा रुके रहूं, लेकिन आप इसे रेडियो और पाशरों और आदि के बीच में अधिक सुनेंगे। मरियम और यूसुफ के लिए क्या ही एक निंदा है, प्रतिज्ञा के परमेश्वर के वचन को पकड़े रहने के लिए। अब याद रखें, और ठट्टा करने वाले, उन्होंने अपनी आंखों की मोहों को ऊपर किया जब उन्होंने छोटी मरियम को गुजरते देखा। यूसुफ को देखकर कहा, तुम एक व्यभिचारी से विवाह कर रहे हो। देखा, और याद रखो भाई, उन दिनों में व्यभिचार करना मृत्यु थी। अब तुम उसे मृत्यु से बचाने जा रहे हो। वो है, वो तेरे द्वारा माँ बनेगी। और लेकिन याद रखें, परमेश्वर हर समय उनके साथ व्यवहार कर रहा था, और यह वचन के अनुसार था, और उन्होंने इसे नहीं जाना था। देखा, एक कुंवारी एक बच्चे को जनेगी। यूसुफ यह जानता था, मरियम यह जानती थी, क्योंकि वचन को लिखने के बाद वहाँ एक दूत उनसे बातें कर रहा था, उसी वचन को प्रमाणित कर रहा था, प्रकट कर रहा था जो लिखा हुआ था, जो घटित होने वाला था। अब सपना मत देखो, सोचो। पवित्र आत्मा नीचे धरती पर उतर आया, पूरी सभा से कभी बात नहीं की। पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। यूसुफ ने देखा और इससे पहले दूत उससे मिलने को आए, उसने कहा तो अब मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ, मैं इस तरह की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। और प्रभु का दूत एक सपने में उसके सामने उपस्थित हुआ और कहा, दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी करने के लिए मत डर, वो जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। ओह प्रभु, क्या ही एक तसल्ली है, समझे। और मरियम अपने कुएं के मार्ग पर थी, वो छोटी कुंवारी जो लगभग 17-18 वर्ष की थी, एक पुरुष से विवाह करने वाली थी जिसका पहले विवाह हो चुका था और 4 बच्चे थे, जो एक वृद्ध पुरुष था, और वो मरियम ने उससे प्रेम किया और वो नहीं जानती थी क्यों, और यूसुफ ने उससे प्रेम किया और वो नहीं जानता था क्यों। और यहाँ पर वे थे, कुएं पर आ रहे थे, जा रहे थे कुछ पानी को भरने के लिए, और उन सभी चीजों पर अध्ययन कर रहे थे जिस पर वह सोच रही थी, उन वचनों पर कोई संदेह नहीं था। और उसके बाद एक प्रकाश उसके सामने चमका, वहाँ एक दूत खड़ा था। सोचो मरियम ने कैसा छोटा महसूस किया होगा, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? मैं सोचता हूँ क्या उसने डर जैसा महसूस किया होगा जैसे मैंने किया था। हेल, सुनो मरियम, हेल का मतलब होता है रुको, उस पर ध्यान दें, मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तू स्त्रियों के बीच धन्य है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और तू एक बालक को जन्ने जा रही है किसी पुरुष को जाने बिना, लेकिन तुझे एक बालक होने जा रहा है, और तुम्हारी चचेरी बहन एलिशिबा वो भी बूढ़ी हो गई है, वो भी गर्भवती हुई है और एक बालक को जन्ने जा रही है, और ये चिन्ह किए जाएंगे। उसने कहा ये कैसे होगा, जानकर देखते हुए एक पुरुष को जाने बिना। उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, वो पवित्र चीज जो तुझसे जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वे उपहास उड़ाने वाले जो कहना चाहते हैं कहें, उसने इसे जान लिया, उसने जान लिया ऐसा होगा क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। अब उसे अवश्य ही कैसा लगा होगा इस समर्पण के दिन, या बालक के खतना के लिए ले आना, जब वो वहाँ इस छोटे से बच्चे को उसकी बाहों में लेकर इस तरह से चल रही थी, और सारी महिलाएं उससे दूरी बनाई हुई थी, सुंदर सुइयों की कारीगरी के साथ वस्त्र पहने हुए थे अपने शिशुओं को समर्पित करने के लिए और उनका खतना करने के लिए, और लगभग वे सभी मेमने को खींच कर लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके पास 2 जंगली कबूतर थे, उसकी अपनी शुद्धिकरण को साफ करने के लिए उसने उसे लिए हुए था। वो छोटा बालक पट्टियों के वस्त्र में लपेटा हुआ था, जो एक बैल के पीछे की गर्दन से जुए से निकला हुआ था, उस जुए से जो एक बैल के पीछे की ओर लपेटा जाता है, केवल वो ही पट्टियों का वस्त्र उस चरनी में था। उनके पास उसके लिए कुछ भी नहीं था, वे बहुत ही गरीब थे, और यहाँ पर वो खड़ी हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं, सभी महिलाओं ने छोटी कुंवारी से अपनी दूरी को बनाए रखा, कहा आप देखते हैं उसके पास एक अवैध बालक है, देखें कि परमेश्वर कैसे कट्टरपंथी दिखने वाली चीजों को बनाता है। ओह प्रभु, वह केवल शैतान की आंखों के ऊपर से बाल को खींचता है। कितनी गंदी, कितनी मलिन, व्यभिचारी, यही है वो, वह एक व्यभिचारक है। इससे छोटी मरियम के हृदय की धड़कन बंद नहीं हो गई, उन्होंने उससे अपनी दूरी को बनाए रखा, वे अभी भी वही काम कर रहे हैं, उसे अब पवित्र पाखंडी या कट्टरपंथी या ऐसा ही कुछ कहते हैं। मरियम जानती थी वो किसका बालक था, वो केवल आगे बढ़ती रही बस उसी तरह से। लेकिन ओह, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया जब शमोन वहाँ पीछे कमरे में बैठा था, उससे प्रतिज्ञा की गई थी, वो यहाँ वहाँ जाकर भविष्यवाणी कर रहा था, उसने कहा प्रभु मुझ पर प्रकट हुआ और कहा मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा, और वो तब 80 ऐसे ही कुछ वर्ष का था, मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा, मैं पहले उसके उद्धार को देखूंगा। ओह शमोन, तुम बूढ़े हो पुत्र, तुम्हारा बूढ़ा मनुष्य उसका सिर घूम गया है, तुम्हें पता है वह थोड़ा सा, बस उसे अपने हाल में छोड़ दो, वो हानि नहीं पहुंचाएगा, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शमोन के पास प्रभु का वचन था, उसने कहा मैंने परमेश्वर की आत्मा को मुझ पर उतरते हुए देखा, मैंने खड़े होकर और उसकी ओर देखा, उसने मुझे कहा शमोन तू एक धर्मी मनुष्य रहा है, और तू, मैं तुम्हें वहाँ एक गवाही बनाने जा रहा हूँ। बस इतना ही, प्रभु आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, यह करना मेरा काम है। मेरा ख्याल ये है कि वह निश्चय रूप से उस दिन पर कोयले को उढ़ेल सकता है, तुम्हारे पास एक गवाही थी, तुमने इसे क्यों नहीं सुना। वहाँ मंदिर में बूढ़ी अंधी हन्ना बैठी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उसे बताया, शमोन सही है, आमीन। वो अंधकार में से दिन की रोशनी को नहीं देख सकती थी, लेकिन वो आज के कई लोगों की तुलना में जिनके पास अच्छी आंखें हैं, कहीं अधिक दूर तक देख सकती थी। उसने आत्मा में आने वाले मसीहा को देखा जो नजदीक था। आत्मा उसके हृदय में मंडरा रहा था। देखें कि वहाँ क्या ही एक छोटी संख्या की कलीसिया थी। जकरिया, एलिशिबा, मरियम, योहन्ना, हन्ना और शमोन, लाखों में से छह, जैसे नूह के दिनों में था, उनमें से छह, उनमें से हरेक के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया था। वे सब एक समानता में थे, वे सभी एक साथ हो गए थे। आमीन। यहाँ बूढ़ा शमोन, यहाँ वो छोटा बालक अंदर आता है। उसने उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना था। यहाँ वो बालक है। और तब शमोन अपने कमरे में बैठा था और आत्मा उस पर आ गया, कहा बाहर निकलो शमोन। यहाँ वो चला गया, चलते जा रहा था, नहीं जानता था कि वो कहाँ पर जा रहा था। जैसे अब्राहम, वह कुछ तो ढूंढ रहा था, वह नहीं जानता था ये कहाँ पर था, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वो रुक गया और पवित्र आत्मा ने अवश्य ही उससे कहा होगा, वो वहाँ पर है। वो वहाँ पर पहुँचा, मरियम की बाहों में से उसने अपनी बाहों में बालक को उठा लिया, ऊपर देखा और कहा, प्रभु अब अपने दास को इस जीवन से शांति से विदा कर, मेरी आंखें आपके उद्धार को देख रही है। वो बात जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे, वो स्त्रियां किनारा कर रही थी। शमोन ने कहा, यही आपका उद्धार है प्रभु। और लगभग उस समय पर यहाँ एक बूढ़ी अंधी महिला आती है, यहाँ वहाँ से घूमकर उसका रास्ता बनाते हुए, इधर उधर लड़खड़ाते हुए, दर्शकों के बीच में से होते हुए, और वो उसके पास आ गई और उसने भविष्यवाणी भी की थी, क्योंकि वो उसके लिए देख रही थी। उसने मरियम से कहा, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिट जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। देखा यह क्या था? अब मैं सोचता हूँ, उनमें से कुछ स्त्रियों ने कहा, अब यह देखो, आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार के दर्जे के लोग हैं, तुम वहाँ हो। देखा ऐसा ही है, देखो ये कहाँ पर है, वो बूढ़ा व्यक्ति दिमाग से पागल है, वहाँ पर वो खड़ा है उस व्यभिचारी लड़की के सामने जो इस तरह की बात कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये है यह अवैध बालक। उस बूढ़ी हन्ना को देखो जो यहाँ बैठती है, खुद को भूखा मार रही है और यह इसी तरह से करती रहती है, और वो ऐसे मजा नहीं कर पाएगी जैसे हम करते हैं, लेकिन वहाँ है ये, देखो वो यहाँ इस देश के सारे समाजों से संबंध रख सकती है। वो एक बहुत अच्छे परिवार से बाहर आई होगी, देखो, और वो वहाँ से संबंध रख सकती है, लेकिन वो वहाँ पर है। देखें कि कैसे वो झुंड एकत्र होता है। ओह हाँ, आमीन। आज भी वही बात है, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर उठाए गए हैं, निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान। ओह क्या हमारे पास थोड़ा और समय है? मुझे कुछ तो कहना है। मेरे पास यहाँ एक और चरित्र है, मैं उस पर देख रहा हूँ, उस समय पर जब वचन प्रकट किया गया था ज्ञानी पुरुषों पर। सोचता हूँ मेरे पास समय होता था फ्रेड आपके लिए कि इसे पढ़ें, क्या आपकी जेब में है? मैं सोचता हूँ आप में से बहुतों ने इसे पत्रिका में देखा है, वह बात जो पवित्र आत्मा ने यहाँ नदी पर बताया था 33 वर्ष पहले ही, उन्होंने अभी इसे ढूंढकर निकाला है। 9 दिसंबर को इसे साबित कर रहा है खगोल विज्ञान, कैसे वो जुपिटर और वे सितारे उनके नक्षत्र में हैं। उनके पास एक पूरा खगोल विज्ञान है, इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ढूंढ निकाला है। बिल्कुल यही वो समय है जब ये तारों का समूह इन सितारों के तारा मंडल में अंदर आ गया था और सीधे बाबुल की ओर मुड़ गए, और वे ज्ञानी पुरुषों ने इस बात को लाया। याद है वे अपने कार्य क्षेत्र उस परिक्रमा से बाहर आ गए, नीचे की ओर मुड़े, अरबों वर्ष का प्रकाश फिर से अलग हो गया, और वे यहूदी ज्ञानी पुरुष जो वहाँ बाबुल में थे, उन्होंने देखा कि नक्षत्र तारा मंडल में आ गया है। उन सितारों में उनमें से 3 एक साथ आगे बढ़ने लगे और उस एक सुबह के तारे को बना रहे थे, और उन्होंने इसे परमेश्वर के वचन से जान लिया कि यही वो समय था जब ये सितारे एक साथ आए तो मसीहा को पृथ्वी पर होना था। यही कारण है उन्होंने चलना आरम्भ किया। कहाँ है वो यहूदियों का जन्मा राजा? वो कहाँ है? कहीं तो है, क्योंकि जब वे तारे आते हैं, जब तक उनका आकाशीय समूह यहाँ इस एक विशाल आकाशीय समूह के अंदर एक नहीं बन जाता है, जब वे तीनों एक साथ बढ़ने लगते हैं, तो उस समय पर मसीहा धरती पर होगा। और जब वे अपने कार्य क्षेत्र में चले गए तो उन मनुष्यों ने यह जान लिया मसीहा धरती पर था। वे अपने कार्य क्षेत्र में निपुण थे, वे महान पुरुष थे। वे अपने धार्मिक विज्ञान के क्षेत्र में निपुण थे। वे इसके धार्मिक पहलुओं को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वे तारे उस ओर आगे बढ़ गए हैं, जुपिटर और सरगास, और फिर उनके रेखा पंक्ति में चले गए हैं और उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि मसीहा कहीं तो है, तो उसे यरूशलेम में होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक संसार के लिए यही वो मुख्य स्थान है। मसीहा के धर्मनिष्ठा का यही उनका मुख्यालय है, यही संप्रदाय का मुख्यालय है, यही वो स्थान है जहां वो बड़ा कलीसिया संबंधित समूह बैठता है। और वे ऊंट पर चले गए, दो वर्ष टिग्रिस नदी के पार और दलदल और जंगलों में से होते हुए यात्रा कर रहे थे, शहर की ओर जा रहे थे, आनंद से भरा हुआ हृदय। वे जान गए थे कि जब वे तारे वहाँ लटक रहे थे, और इस यहाँ तक कि आज खगोल विज्ञान का कहना है, यदि वे वास्तव में वे तारे उस स्थान पर फिर से आते हैं, ये एक तारे को बनाते हैं जहाँ पर वे खड़े हुए थे, देख रहे थे, लेकिन उन्हें उस स्थान पर खड़ा होना था इसे देखने के लिए। आमीन आमीन। इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, इस बात पर निर्भर करता है आप किस बात के लिए देख रहे हैं। जी हाँ। सो उन्होंने इसे देखा और वे इसके पीछे चले, और वे ठीक रेखा पंक्ति में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कहाँ मिलेगा, यह ठीक उनके साथ रेखा पंक्ति में थे। इसने उनकी अगुवाई की। देखा, इसी तरह से आपको सारे वचनों को रेखा पंक्ति में करना होगा, सब कुछ उसके बाद वचनों के साथ उस रेखा पंक्ति में बने रहना है। यही केवल एक तरीका है, यह आपको सीधे उसकी ओर अगुवाई करेगा, निश्चय रूप से वो करेगा। अब ध्यान दें, यहाँ वे आते हैं पुकारते हुए, कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा है। यरूशलेम के अंदर उस तारे ने उन्हें सीधे वहाँ लेकर गया, सीधे वहाँ सांप्रदायिक मुख्यालय की ओर, लेकिन जब वे इससे अलग होकर मुड़ गए, उस तारे ने उन्हें छोड़ दिया। वे शहर के अंदर चले गए, वे सड़क पर ऊपर और नीचे चलने लगे। उन्होंने सोचा कि शहर परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ होगा। सड़क पर ऊपर और नीचे खुशी के साथ वे चलने लगे, पुकारते हुए, कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा है। जब हम पूर्व में थे, तब हमने उसके तारे को देखा और हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। याद रखें, वो तारा, वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वे पूर्व में थे, पश्चिम दिशा की ओर अगुवाई करते, अब भी आगे बढ़ रहा है, हमें नेतृत्व करते, समझे। वे बिल्कुल ही तो बाबुल और भारत के पूर्व फिलिस्तान में स्थित है, जो एक तरह से दक्षिण पूर्व की ओर है, और वे पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे थे, पश्चिम दिशा की ओर अगुवाई। आप उस गीत को जानते हैं, अभी भी आगे बढ़ रहा है, हमें सिद्ध प्रकाश की ओर नेतृत्व करता है। देखा, वे ज्ञानी पुरुष पश्चिम को आ रहे थे, पूर्व को छोड़ते हुए पश्चिम जा रहे हैं, और उन्होंने उस तारे को देखा। अब यदि वे पश्चिम में थे, पीछे की तरफ देखते हुए उन्होंने इसे नहीं देखा। देखा, वे जब वे वहाँ पहुँचे, इसने उन्हें सीधे वहाँ निर्देशित किया, फिर यह उन्हें छोड़कर चला गया, और उन्होंने सोचा, यह यहाँ पर है, तारा छोड़कर चला गया है, तो यह यहाँ पर है, वे शहर में है। तो ओह प्रभु, उन्होंने कहा, हर कोई बस गा रहा है और खुश है, परमेश्वर की महिमा ने सब कुछ उजागर कर दिया है। तो हम यहाँ पर हैं, हम जानते हैं हमारी सफलता, जैसा हमने उस नक्षत्र को देखा, कोई भी नहीं, कोई विशेषज्ञ वहाँ आकर उन तारों को एक साथ नहीं ला सकता। और हम जानते हैं, जब ये तारे स्वर्गीय समुदाय में आते हैं, यही वो समय है जब मसीहा पृथ्वी पर होता है, मसीहा धरती पर है, और हर इतने 100 वर्षों में वे फिर से अपने नक्षत्र को बनाते हैं, आप देखते हैं, और तब पृथ्वी पर एक उपहार आता है। ध्यान दें, मसीहा धरती पर है जब वो तारों का समूह एक साथ आता है, और वे जान गए कि वो वहाँ पर था। वे धर्म मुख्यालय की ओर चले गए, और चलना आरंभ करते हुए उन ऊँटों पर वे ऊपर और नीचे सड़क पर चलते हुए कहते हुए, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है जो यहूदियों का जन्मा राजा है। हमने पूर्व में उसके तारे को देखा है, यह यहीं कहीं पर है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। क्या ही निंदा है। वे मुख्य याजक के पास गए, उसने कहा, शायद कहाँ होगा, तुम्हारे पास क्या मामला है लोगों, क्यों तुम कट्टरपंथियों का झुंड हो। देखा, उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के ऊपर क्या ही निंदा है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन्होंने उसके तारे को देखा, और वे ज्ञानी पुरुष थे, चतुर, वे धार्मिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र में थे, और वे जानते थे, जब वे तारे वहाँ पहुँच गए, मसीहा वहीं कहीं पर था, और यहाँ वह स्थान जिसे जानना चाहिए था, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं कल्पना करता हूँ कि बच्चे सड़क पर खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा, हाँ उसकी ओर देखो, हाँ यही वो कट्टरपंथियों का एक झुंड है, उनको देखो, कह रहे हैं, वो कहाँ है, यहूदियों का जन्मा हुआ राजा। वे जानते नहीं कि हेरोदेस यहाँ का राजा है, वे फलाना बिशप को नहीं जानते हैं, ओह प्रभु, वो यहूदियों का जन्म राजा कहाँ पर है? हमने पूर्व में उसके कार्य को देखा है। वे कहते हैं, यहाँ आओ, यहाँ पर आप सारे ज्ञानी पुरुष जो आसपास है, यहाँ आओ। क्या आप सबने कहीं भी किसी तारे को देखा है? ओह, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आप सभी जो खगोल वैज्ञानिक हैं, यहाँ पर आ जाएं। क्या आप सभी ने कोई तारे को कहीं पर भी देखा था? नहीं, नहीं। क्या आपने ऐसा किसी भी तरह का कोई रहस्यमय चिन्ह को देखा है? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। नहीं, अब तक तो नहीं। या तो एक ही बात है, वे कुछ भी नहीं देखते हैं, वे इसे नहीं देख सकते हैं। चलो सेवकों को बुलाओ। आप सबके बारे में क्या? नहीं, हमने कोई भी तारा नहीं देखा। ठीक है, आपके बारे में क्या लोगों जो वहाँ दीवार पर बाहर बैठे रहते हैं? आपने तारों को ध्यान दिया? आप हमेशा जानते हैं, आप जानते हैं कि आकाश में हर तारा मंडल कहाँ है। आप हर तारे को जानते हैं। क्या आपने कुछ देखा? नहीं, हमें कोई चीज नहीं दिखी, लेकिन ये वहाँ पर था। परमेश्वर की महिमा हो। ओह प्रभु, क्या आप इसे नहीं देख सकते हैं? ये अब वहाँ पर है और वे इसे नहीं देख सकते हैं। ये ठीक उनके आसपास हो रहा है और वे इसे नहीं देख सकते हैं। नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। ओह, मैं वहाँ गया था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। निश्चय ही आप नहीं देखते हैं, तब तो बहुत ही अंधे हैं। ये आपके लिए नहीं है कि इसे देखें। देखा, यदि आप वो अंधे हैं, क्यों? तो यकीन है आप इसे नहीं देख पाएंगे। यह तो केवल उन लोगों के लिए है जिसे परमेश्वर इसे प्रकट करेगा। यही वो एक है जो इसे देखते हैं। हमेशा इस तरह से किया गया है। निश्चय ही ये तो नूह था जो ऊपर आकाश में बारिश को देख सकता था, आप जानते हैं, लेकिन उनमें से बाकी के लोग इसे नहीं देख पाए। समझे, उन्होंने वहाँ ऊपर बारिश को नहीं देखा, लेकिन नूह इसे देखता है। ये तो अब्राहम था जिसने सारा को बालक पकड़े हुए देखा था। ये सही बात है, ना कि मजाक उड़ाने वाले जो कहते हैं, राष्ट्रों के पिता, अब तुम्हारी कितनी संतानें हैं। हम बाइबल में से होते हुए कितना कुछ बता सकते हैं, संतों और भविष्यवक्ताओं को लेते हुए, सब में से होते हुए, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। वे जानते हैं कि वचन इसे बोलता है और ये वहाँ पर है, यहाँ पर इसका प्रमाण है, वे इसे देखते हैं। अब ध्यान दें, ओह प्रभु, हमारे ज्ञानी पुरुष उस तारे को नहीं देखते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों? असल में जब वे देख रहे थे और वे एक झुंड के साथ चले गए, तारा बाहर निकल गया। आज भी वही बात है। यही वो कारण है कि बहुत से प्रकाश को बाहर रख देते हैं। यह सही बात है, वे एक इस तरह के ऐसे झुंड के साथ जुड़ते जा रहे हैं कि इसे पहले स्थान में विश्वास भी नहीं करते हैं। और कैसे हमारे पास एक कलीसिया का संगठन होने जा रहा है? हम कैसे एक साथ चलने जा रहे हैं जब तक हम एक साथ सहमत नहीं होंगे? कैसे यहाँ संसार भर के सारे कलीसिया की संगति होनी है? संसार की जो संयुक्त कलीसिया हैं, हम एक साथ कैसे एकजुट होने जा रहे हैं जब हम लाखों लाख मील अलग हैं? देखा, हम इसे कैसे करेंगे? हमारे साथ इवांजेलिकल्स हैं और ये और वो हैं, और फिर भी इस तरह के एक भ्रष्ट झुंड के साथ जुड़ गए हैं। परमेश्वर एक ऐसी पत्नी को लेने जा रहा है जो शुद्ध, पवित्र, बिना मिलावट की है, उसके वचन के साथ बनी रहती है। तो ठीक है, यीशु ने वचन के लिए निंदा लिया, और बाद में हम रुकेंगे, बस एक मिनट में। यीशु को वचन के लिए अपमानित किया गया था। यहाँ देखे, वो किस तरह से निंदा में खड़ा हो सकता है जबकि वो दैविक था, देहधारी वचन। वो खुद परमेश्वर था जो देहधारी हुआ था। अब आप जानते हैं कि बाइबल ने ऐसा कहा, हमने उसे छुआ, दूतों ने उसे देखा। केवल इसे सोचे, मेरा मानना है कि तिमोथियुस इसे इसी तरह से कुछ बताता है। देखा, उसने कहा कि और इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। वे दूत उसके जन्म पर थे। कैसे उन दूतों ने अवश्य ही नीचे देखकर और आनंद मनाया होगा जब उन्होंने वहाँ चरनी पर देखा और परमेश्वर को देहदारी देखा। आमीन। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे चिल्लाने लगे, आज दाऊद के शहर में उद्धारकर्ता मसीह जन्मा है। दूतों ने आनंद किया और उन्होंने अपने पंखों को एक साथ हिलाया और यहूदिया की पहाड़ियों पर उन्होंने गीत गाया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। उन्होंने परमेश्वर के वचन को देखा जिसे उन्होंने इस पर ध्यान दिया था। यह देखने के लिए यह प्रकट हुआ है और यह वहाँ पर था। अब शैतान ने इसे विश्वास नहीं किया। आप जानते हैं, उसने कहा, यदि तू है, दूत ने कहा वो है। यही वो अंतर है, यदि तू है तो ऐसा ऐसा कर तो हम तुझे इसे करते हुए देखें। लेकिन दूत ने कहा वो वहाँ पर है। उन ज्ञानी पुरुषों ने अपने धार्मिक विज्ञान के साथ कहा वो वहाँ है। आमीन। यही वो कारण है कि आज वे पुरात्मक विज्ञान और इत्यादि इन चीजों को खोदकर ऊपर ला रहे हैं, जिसकी कुछ वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई है, जिसे पूरा होना है, और यहाँ पर ये इसे खोदकर निकाल रहे हैं। ये यहाँ तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है जिसने कभी कहा था कि पोंटियस पिलातुस कभी धरती पर था। क्या आप ये जानते थे? आप में से कुछ स्कूल के बच्चों ने मुझे बताया कि इतिहास में पोंटियस पिलातुस के बारे में कहां पर बोला गया है, और अविश्वासियों ने इसका उपहास किया और इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक रोमन सम्राट कभी नहीं था, एक गवर्नर का नाम पोंटियस पिलातुस हो। लेकिन लगभग 6 हफ्ता पहले उन्होंने आधारशिला को खोद निकाला, पोंटियस पिलातुस गवर्नर। ओ प्रभु, क्या ही मूर्खता है। उन्होंने कहा इतिहास में एक रामसेस कभी था ही नहीं, जो रामसेस मिस्र पर बताया गया था, लेकिन उन्होंने एक पत्थर को खोद निकाला, पुरात्मक विज्ञान, वो दूसरा रामसेस। ध्यान दें, और उन्होंने कहा कि वे दीवारें कभी नहीं गिरी, पुरात्मक विज्ञान यहाँ वहाँ खुदाई कर रहा था, और सबसे पहले आप जानते हैं उन्होंने बहुत नीचे तक खोद निकाला जहाँ येरियो में वे दीवारें गिर गई थी। आप जानते हैं जब तुरही को बजाया गया था, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक कल्पना थी, किसी गीतकार ने एक गीत में कहा जिसे बहुत पहले गाया गया था। जी हाँ, उपहास उड़ाने वाले कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक कल्पना थी, दीवारों के गिरने के जैसी कोई चीज थी ही नहीं, और यहोशु तुरही को फूंक रहा था और दीवारों के चारों ओर घूम रहा था और वे नीचे गिर गई, ऐसे कभी चीज थी ही नहीं। और कुछ बड़े मसीही पुरात्मक विज्ञान अब इसकी खुदाई करते जा रहे हैं, क्योंकि वह जानता था कि इसे इसी तरह से होना था। उसने कुछ 30 फीट से ज्यादा खोदा नीचे, जहां उसमें से बाकी की चीजें थी, वहां दीवारें थी, ठीक एक दूसरे के ऊपर ढेर थी, बिल्कुल जैसा वचन ने कहा था। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं थी जब दाऊद ने कभी उसके वाद्य यंत्र को बजाया हो, उसका वाद्य तार वाली वीणा, क्योंकि तार वाला संगीत 15वीं शताब्दी तक ज्ञात नहीं हुआ था। कहा ऐसी कोई कभी चीज नहीं थी, मसीह पुरात्मक विज्ञान ने वह मिस्र में खोद निकाला, 4000 वर्ष पहले उनके पास तार वाली वीणा थी। आमीन। ओह प्रभु, उन्होंने इब्रानी बच्चों के बारे में कहा वे भूसी से पत्थर और आदि ऐसी चीजें बनाते थे, ऐसी कोई चीज नहीं थी। पुरात्मक विज्ञान वहाँ पर खुदाई करने को गया, उन्हें क्या मिला? यही विज्ञान है। उन्हें क्या मिला? शहर की दीवारें जिसे इब्रानियों ने बनाया था। पत्थरों की पहली परत पर लंबी भूसी थी, दूसरा पत्थर छोटे छोटे भूसी के टुकड़े से कटा हुआ था, और तीसरे में इसमें कोई भूसा था ही नहीं। ओह प्रभु, राष्ट्र टूट रहे हैं, इसराइल जाग रहा है, वे चिन्ह जिसे भविष्यवक्ताओं ने पहले से बताया। जी हाँ श्रीमान, इन सब बातों को ठीक हम तक पहुँचाया गया है। भाइयों बहनों, ऐसा क्यों है पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा जगत ने कभी भी ऐसा नहीं किया है जो उसने किया है? सिनेमा के पर्दे पर सेसिल डिमिल के द्वारा द 10 कमांडमेंट की कहानी आई। सिनेमा के पर्दे पर बैनर के माध्यम से यीशु मसीह के जीवन को बताया गया। सिनेमा के पर्दे पर बिग फिशरमैन आई, जो पतरस का परिवर्तन है, और ये सारे धार्मिक नाट्य जिसे सिनेमा ने अस्वीकार कर दिया था और गंदा किया और निकाल फेंका था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी महान सामर्थ में बिल्कुल उसी तरह से इसे लेकर आया। ठीक अभी उन चीजों को जो कुछ वर्षों पहले बताया गया था, एक दिन परमेश्वर के छोटे नम्र दास ने, जो मैं खुद हूँ, मैंने कहा वहाँ एक उजाला रुका हुआ था और मुझसे बात की और मुझे कुछ चीजों को करने के लिए कहा। लोग हंस पड़े और कहा उसका दिमाग थोड़ा सा घूम गया है। वहाँ इसकी एक तस्वीर है, विज्ञान ने इस बात को उठाया, ये वहाँ पर है, यही सच्चाई है। मैंने कहा महिला पर मृत्यु की छाया है, उन्होंने कहा छाया के रूप में, अब यह बेकार की बात है, वो इस बात को अपने मन से बना रहा है। वहाँ इसकी तस्वीर है, परमेश्वर चट्टानों को चिल्लाने को लगाएगा, वो इसे करने में सक्षम है, वो जो करना चाहता है। यीशु वचन के लिए निंदा, परमेश्वर का दैविक पुत्र वहाँ खड़ा है, इमैनुएल, क्या ही एक निंदा है। अविश्वास करने वाले पापी उसे बांधते हैं, उसके चेहरे पर थूकना और दाढ़ी को झटके से खींचते हैं और उससे कुछ भी करने के लिए हिम्मत करते हैं। वचन के लिए निंदा, क्या पिता के वचन को पूरा करने के लिए? ओह, लेकिन याद रखें, उसे मृत्यु के निंदा के लिए खड़ा रहना ही है। परमेश्वर जो कभी नहीं मर सकता है, और केवल वही वो एक है जो एक पापी को बचाने के लिए मर सकता है, कोई भी और नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, एकमात्र परमेश्वर स्वयं ही ऐसा कर सकता है। और यहाँ पर वो था, उसने कहा कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन वह जो नीचे उतरता है, यहाँ तक कि मनुष्य का पुत्र जो अब स्वर्ग में है। आमीन। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वे मर गए। उसने कहा और तुम कहते हो कि तुम जीवन की रोटी हो। उसने कहा अब्राहम से पहले मैं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। उन्होंने कहा तुम 50 वर्ष के भी नहीं हो और कहते हो कि तुमने अब्राहम को देखा है। उसने कहा अब्राहम से पहले मैं हूँ और उसके बाद पापी उसे बांध देते हैं, संस्थापक कलीसिया उसे बांध देते हैं। आप याद रखें अंतिम दिन में इस धनी लौत किया कलीसिया ने, उन्होंने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया है। क्या आप देखते हैं ये अभी कहाँ है? क्या आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ उन सिद्धांतों के विरोध में क्यों पुकार रहा हूँ? यीशु ने पापियों को क्यों बांधने दिया? यह वचन को पूरा करना था, परमेश्वर के लिए एक निंदा को लाने, मरने के लिए परमेश्वर को मरना था, उसे शरीर में होना था जिससे कि वो मर सके। और यीशु ये जानता था, उसने उन्हें इसके बारे में बताया था। उसने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा, ना ही कोई और इसे खड़ा करेगा, मैं इसे खड़ा करूंगा। 3 दिनों में मैं इसे फिर से वापस लाऊंगा, तुम इसे ढा दो, मैं इसे खड़ा करूंगा। जैसे योना वेल मछली के पेट में 3 दिन और रात के लिए था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को धरती के हृदय में होना ही है। और यहाँ तक उन्होंने इसे समझा भी नहीं। देखा, वचन के लिए एक निंदा वो था। अब मृत्यु के निमित्त उपहास किया गया ताकि अनंत जीवन के लिए फिर से जी उठे। उसे पहले मृत्यु के लिए डाला जाना था, इसलिए वह अनंत जीवन के लिए जीकर उठ सका और हर एक दूसरी मनुष्य जाति के लिए अनंत जीवन को ला सका जो उसके रूप में थे, जो इसे स्वीकार करेंगे। समझे, वह मनुष्य बन गया, एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बन गया और सारे उपहास के लिए खड़े रहना था, वैसे ही जैसे उसके दास जनों ने उसके पहले किया था। जैसे मूसा, जैसे नूह, जैसे कि वे बाकी के सारे उस उपहास के लिए खड़े थे, उसे उपहास के लिए खड़ा रहना था। क्यों? उसके पास वचन था और वो वचन था। यही वो कारण है उन्होंने उसका पहले से ही कहीं अधिक उपहास किया। वो अपने आप में दैविक और वचन था। हालेलुया, यही है वो जो उसे बनाता है। यीशु ने कहा तुम ढोंगी हो, कहा तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रों को बनाते हो और तुम ही वो एक हो जो उन्हें वहाँ उनमें डाल देते हो। वे परमेश्वर के वचन के साथ आए और तुमने उन पर विश्वास नहीं किया, तुम उनमें हर एक के दोषी हो। फिनिक्स में परमेश्वर ने चाहा तो मैंने एक दिन वचन को कहा था मैं इस पीढ़ी को यीशु मसीह की हत्या के लिए दोषी ठहराने जा रहा हूँ, उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाने के लिए मैं उस सेवकों की समिति के सामने एक अभियोग को लगाने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने चाहा तो वे यीशु मसीह के लहू के दोषी हैं, उसे क्रूस पर दोबारा चढ़ाने के लिए। जी हाँ श्रीमान, पूरी तरह से दोषी। पतरस ने उन्हें पेंटिकॉस के दिन पर दोषी ठहराया। उसने कहा तुमने इन दुष्ट हाथों से जीवन के राजकुमार को क्रूस पर चढ़ाया है जिसे परमेश्वर ने जिलाया है, हम गवाह हैं। उसने एक अभियोग को लगाया। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर हर एक संप्रदाय पर अभियोग लगाता हूँ जो वहाँ पर हैं, और धरती पर हर एक मनुष्य यही यीशु मसीह के लहू का दोषी है। परमेश्वर उस दिन पर उसका प्रतिनिधि होने के लिए मेरी सहायता करे, आमीन। जी हाँ, ओह, उपहास करने वालों ने उसका मजाक उड़ाया, उन्होंने उसे अपमानित किया, वह ठीक इसके साथ बना रहा, आमीन। ओह, देखो उसने क्या किया, वह परमेश्वर का पुत्र था, मृत्यु को सहा जिससे कि पाप का खात्मा करे, और उसे ऐसा करना था। यही एकमात्र तरीका है इसे मृत्यु के लिए डाला जा सकता है, और उसने ये किया और इसके लिए खड़ा था क्योंकि उन बाकी के सभी ने किया था, क्योंकि वे सभी जो वहाँ पहले थे परमेश्वर के छोटे वचन थे, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा, प्रभु का वो वचन भविष्यवक्ताओं के पास आया था, और उनमें से किस एक पर उसने कहा जिसे तुम्हारे पिता तुम्हारे संगठित धर्म ने पत्थर नहीं मारा और मृत्यु के हवाले नहीं किया, उनमें से किस एक ने भविष्यवक्ताओं को स्वीकार किया? बाद में उनके मरने के बाद तुम उनकी कब्रों को बनाते हो, कहा तुम उन्हें वहाँ डालने के दोषी हो। तब उसने उन्हें दांत की बारी के बारे में दृष्टांत दिया, और दास आते हैं, उन्होंने उनसे दुर्व्यवहार किया, फिर अंत में कहा अब हम पुत्र को मार डालेंगे क्योंकि वह वारिस है। समझे, ओह, वे गुस्सा हो गए जब उन्होंने यह देखा। लेकिन उसे निंदा के लिए खड़ा रहना था, और यहाँ वो खुद मृत्यु की ओर बढ़ने के लिए बंधा हुआ था जिससे कि मृत्यु के लिए डाला जाए ताकि अनंत जीवन को वापस लाए। परमेश्वर की महिमा हो, ओह, मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ। अनंत जीवन को वापस लाता है और परमेश्वर के हर एक पुत्र को खड़ा करता है, हर एक युग में से होते हुए जो उस वचन के साथ खड़े थे और निंदा को लिया। यह सही बात है। यदि वो नहीं आया होता था तो नूह नहीं खड़ा हो सकता था। यदि वो नहीं आया था एलिया वापस नहीं आ सकता है। यदि वो नहीं आया था तो नूह कभी भी उठ खड़ा नहीं होगा। यदि वो नहीं आया होता था, क्योंकि वो पहले से ठहरा हुआ मेमना था जो खुद पर निंदा को लेने के लिए आया और परमेश्वर के हर एक वचन के लिए मृत्यु के लिए मरता है, जिसे बताया गया था और जिसके लिए ये धर्मी पुरुष खड़े हुए थे, उसे करना था। कोई भी इसे नहीं कर सकता था, परमेश्वर स्वयं, और वो आया और स्थान को ले लिया जिससे कि वो छुड़ा सके और परमेश्वर के हर एक पुत्र को अनंत जीवन दे जो उसी वचन के लिए खड़ा हुआ है और जो निंदा को सहता है। परमेश्वर के हर एक पुत्र उन युग में से होते हुए जो निंदा के लिए खड़े रहे, कोई भी एक उसे छुड़ा नहीं सका, लेकिन विश्वास के द्वारा उसने उस छुड़ाने वाले को आते हुए देखा। अय्यूब ने उसे देखा, अय्यूब वहाँ खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा, ओह तुम एक गुप्त पापी हो, परमेश्वर केवल तुमसे दुर्व्यवहार कर रहा है क्योंकि तुम एक गुप्त पापी हो। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंतिम दिनों में वह धरती पर उठ खड़ा होगा, भले ही खाल के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, फिर भी मेरी देह में मैं परमेश्वर को देखूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसे शाप क्यों नहीं देते और मर जाते। कहा, तू एक तुच्छ अभागी की तरह दिखती है। उसने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की तरह बात करती है। आमीन। वहाँ वो था, मैं जानता हूँ कि वह जीवित है और वो अंतिम दिन में खड़ा होगा। यदि यीशु नहीं आया होता तो अय्यूब को छुड़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मेमना था जो संसार की नींव से लेकर मारा गया था। वो उसके स्थान को जान गया, वह अपने दर्जे को जानता था। यही वो कारण है कि मरियम ने उस दर्जे को पहचान लिया उस दिन जब वो वहाँ से बाहर आती है। उसने कहा, यदि मैं तुम यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। कहा, हाँ प्रभु, पुनरुत्थान में वह एक भला लड़का था। यीशु ने कहा, लेकिन मैं पुनरुत्थान हूँ, क्या तू इसे विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं जिसे संसार में आना था। उसने कहा, तुमने उसे कहाँ दफनाया है? ओह, तुम वहाँ पर हो। उसने इसे पहचान लिया। वो छोटी स्त्री इसे नहीं कह रही थी, उसके पास 7 दुष्ट आत्माएं थी जो उसमें से बाहर निकाली गई थी। उसने परमेश्वर की सामर्थ को जान लिया जो घमंड और तनाव और सब कुछ उसमें से बाहर निकाल सकता है, जो छोटी स्वार्थी हाई स्कूल की आत्मा को बाहर निकालकर और एक नई सृष्टि को बना सकता है। उसने 7 दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। वे स्त्रियां जानती थी कि वो क्या था जिन्होंने उसे स्वीकार किया था। वे जानते हैं कि वो उनके लिए क्या कर सकता है, तो आज भी वे ऐसा करते हैं। केवल इसे स्वीकार करें। यही वो अगली बात है, वो वहाँ पर है। उसने ऐसा कहा और वह, आप जानते हैं किस बात ने जगह ली थी? ओह, वे सब जो उसी वचन के लिए दुख उठाएंगे, वह उसी कारण से मरा। वो ही केवल एक था जो मर सकता था ऐसा करने के लिए, क्योंकि वह वचन था। वह वचन था, वचन प्रकट बना। बाकी सभी के पास थोड़ा सा अंश था, लेकिन यहाँ उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता थी। आज वो वैसा ही है। इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। सुनो, मैं वास्तव में बंद कर रहा हूँ, मैं इसे करने जा रहा हूँ, अब करना होगा, मैंने समय से ज्यादा लिया है। उसने कभी एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या उसने लिखा? कभी एक वचन नहीं लिखा। क्यों? वो वचन था। यह क्या था जो वचन लिखे गए थे? वह उस वचन का प्रकटीकरण था। महिमा, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो वचन था, उसे कुछ भी लिखना नहीं था। वो वचन था, यह लिखित वचन प्रकट बना। परमेश्वर की महिमा हो। वो आज भी वही है, कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो वचन है, वचन प्रकट बना। आप कहते हैं, क्या यह सही है भाई ब्रैनम? देखो, यहोवा वहाँ पर खड़ा है। कोई आश्चर्य की तरह उस लहरों पर लकीर को फूंक दिया और इज़राइल के लिए रास्ते को बनाया कि उसमें से होकर चलें। यहोवा को शरीर में देखो, कहता है, शांत रह, थम जा। जब लहरें तूफान में तटों पर टकरा रही थी और शैतान हर एक चीज पर इस तरह से पिटाई खा रहा था, उसने कहा, शांत रह, थम जा, और इसने उसकी आज्ञा का पालन किया। हवाओं और इत्यादि ने, वो यहोवा था। आमीन। वो यहोवा जो वहाँ खड़े होकर कुछ ओस की बूंदों को वहाँ छिड़क सकता है, इसे धरती पर गिरने देता है और वे रोटी को बनाए लोगों को खिलाने के लिए। वो खड़ा हुआ और 5 मछलियों या 5 रोटियों और 2 मछली को लिया और 5,000 को खिलाया। वो वचन था। आमीन, आमीन। वो वचन है और वो हमेशा ही वचन बना रहेगा, और मैं और मेरा घराना हम वचन की सेवा करेंगे। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे को देखना चाहता हूँ, वहाँ हमेशा ही उद्धार के अनुग्रह को गाऊंगा। महिमा की सड़कों पर मैं अपनी आवाज को उठाकर सारी चिंताएं बीत जाएंगी, आखिर में घर पर हमेशा का आनंद। ओह प्रभु, हाँ, वचन के लिए निंदा को सहना, वचन के साथ निंदा चली जाती है, वचन के साथ बने रहो और निंदा को सहन करें। आइए प्रार्थना करें। यीशु, जैसे एक रात को प्रभु मैं पुकार उठा, हे यीशु, आपके पास मेरे करने के लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु। इन चीजों को देखते हुए और उस घड़ी को जानते हुए जिसमें हम रह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ अपनी छोटी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं दर्शन में के छोटे पक्षियों के बारे में सोचता हूँ, वे चीजें जो हुई हैं, और वे दूसरे पक्षी जो महान बातें हैं, लेकिन वहाँ उनमें से तीन खाचे थे प्रभु, लेकिन जब उन दूतों ने कदम रखा वहाँ कोई भी पक्षी नहीं बचा था। वे छोटे संदेशवाहक बहुत ही अद्भुत रहे थे प्रभु, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ तो बात जगह लेना अब निश्चित है। इसे होने दे प्रभु, हमें अपने तरीके से ढाल और बना। हम मिट्टी हैं, आपको भार हैं। इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रभु, हम परमेश्वर के उपहार के लिए आभारी हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें दे रहा है। हालांकि यह कुछ तो होगा, जैसे कि हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं, एक दिन किसी पागान अंधविश्वासी जिन्होंने इसे एक मास में ढालने की और बनाने की कोशिश की है, क्रिस मास। लेकिन हम सांता क्लॉज और क्रिसमस के पेड़ और सजावट को लेकर उस तरह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु के नाम में आ रहे हैं, सर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जो देदारी हुआ था हमारी तरह शरीर में और हमारे बीच में रहा हमें छुड़ाने के लिए। और नाम के लिए निंदा को सहना पड़ा, क्रूस की निंदा को सहना पड़ा। एक सांसारिक व्यवस्था ने इमैनुअल को मृत्यु के लिए रख दिया, जिससे कि वो हमारे लिए अनंत जीवन को ला सके। हम कौन है प्रभु, हम कौन है कि हम किसी भी निंदा से बचें। परमेश्वर हमें साहसी योद्धा बनाए। मैं इन शब्दों को आपको सौंपता हूँ पिता, वे टूटे हुए हो सकते हैं, थके हुए और शिथिल जैसे मैं हूँ, लेकिन पिता यहाँ बैठकर और सुनने वाले इन लोगों को इनाम देना, और होने पाए वो सामर्थ जिसने हमारे प्रभु को लाया और यहाँ हमारे लिए उद्धारकर्ता के लिए उसे प्रस्तुत किया। अंतिम दिनों में होने पाए ये यहाँ पर हरेक आत्मा को झिलाए प्रभु, प्रभु यीशु की आगमन के निकट होने के लिए होने पाए, ऐसा हो जाए पिता। हमारे बीच में बीमार और पीड़ितों को चंगा करें, टूटे हुए हृदयों को जोड़ दें। प्रभु हम इसमें से बहुत ज्यादा गुजर चुके हैं, मेरे हृदय में कठिन लड़ाई से इस पर बहुत से जख्म के निशान हो चुके हैं प्रभु। मैं एक पुराना अनुभवी योद्धा हूँ प्रभु, मेरी सहायता करें, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है यह सारा प्रशिक्षण एक उद्देश्य के लिए दिया गया है, मैं भरोसा करता हूँ इसे किया गया है प्रभु, मेरी सहायता करना हे परमेश्वर, और इस कलीसिया की सहायता करें और एक साथ हमें आशीष दें। छोटे बच्चों को आशीष दीजिए। मैं आज बहुत से छोटे बेचारे छोटे बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, उन्हें वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके साथ रहेंगे और उनकी सहायता करेंगे, उन्हें अनंत जीवन देना प्रभु। यही वो महान, यही वो क्रिसमस का उपहार है जिसे हम चाहते हैं, जो यीशु का जीवन है, ताकि मेरे हृदय में अधिकार और राज्य करे। यही है वो जो मैं चाहता हूँ प्रभु। अब हमें एक साथ आशीष दीजिए। हम इन शब्दों को आपको सौंपते हैं, उन आशीषों को उतरने दो जहाँ कहीं भी वे इच्छा रखते हैं प्रभु, जहाँ भी कभी वो हृदय खुलता है, होने पाए वे उद्धार के महान समय को आगे लेकर आए। यीशु के नाम में आमीन। कभी कितने उससे प्रेम करते हैं, किसी भी तरह बहुत जल्दी में है। ओह, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे। आज रात की सभाओं को मत भूलना। अब आप जानते हैं कि क्रिसमस का क्या अर्थ है। ओह, यह मेरा क्रिसमस का उपहार है, यह वही वचन है। प्रभु, यदि मैं खुद को केवल हटा सकता हूँ, यदि मैं खुद को रास्ते से बाहर कर सकता हूँ, जिससे कि आपका वचन इससे व्यक्त हो सकता है, वो स्वयं यहाँ इसमें से होकर बाहर आए, यही वो सबसे महान चीज है जो मैं जानता हूँ। अब मुझे लगता है कि उनके पास कुछ चीजें हैं जो वे बच्चों को देना चाहते हैं। अब मैं सभा को वापस भाई नेविल को दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई नेविल।